नमस्कार, चारबक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज की पॉडकास्ट होगी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और बाद में एक और विषय पर बात करेंगे। तो कुछ 4 साल पहले ये अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बिल प्रस्तुत किया था और बोला था कि हम ये बिल लाएंगे और ये बिल ऐसा होगा, ये बिल वैसा होगा। तो 4 साल हो गए, वो बिल तो बिल ही रहा, मगर फाइनली कुछ दिन पहले वो बिल की नोटिफिकेशन आ गई है। और उस बिल की नोटिफिकेशन आई है 11 मार्च को। सो बेसिकली उसको कहते हैं कि नोटिफाइड रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज पेविंग वे फॉर द लॉ विच वॉज कॉ पास इन पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019। तो इस कानून के तहत क्या होगा? इस कानून के तहत बेसिकली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई जो माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले एज आए इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे या किसी भी कारण से आए थे, और उन्होंने अपनी स्टे को एक्सटेंड किया था और उन्होंने असाइलम के लिए एप्लीकेशन दी थी, उनको अभी भारत में रहने का फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसके लिए बात करने के लिए मैंने अजीत को बुलाया। सो अजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
थैंक यू फॉर हैविंग मी।
तो अभी एक काम करते हैं। पहले अजीत, लगता है कि CAA को थोड़ा सा समझा देना चाहिए कि क्या है, कि सीधा धोबी पछाड़ पे शुरू हो जाए।
नहीं, हाँ, जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जो इन लोगों के हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, सिटीजनशिप छीन ली जाएगी मुसलमानों की, या फिर ये मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे संविधान के अगेंस्ट है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा। तो इन सब बातों को मुझे लगता है कि थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए।
तो फिर शुरुआत ऐसे करते हैं, जैसे कि जो CAA है वो क्या गैप को फिल करता है। तो बेसिकली वो जो हमारी सिटीजनशिप एक्ट है 1955 की, राइट, वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है कि बेसिकली जो भी लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज जो प्रताड़ित हुए थे इन 3 देशों में और उन वहां से प्रोसिक्यूशन के लिए भाग के आए हैं, और उनको एक स्पेशल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग द पास्ट ऑफ भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, बेसिकली भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उसको ध्यान में रखते हुए किया है। मगर इसके ऊपर भी कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान बना एक गलत मूल मूलतः गलत सोच पे था। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत उस सोच को रिस्पॉन्ड करे। तो इसके ऊपर क्या बात करें पहले, क्योंकि ये लॉ को ही क्वेश्चन करते हैं कि ये लॉ की नींव ही गलत है।
नहीं, इसमें फंडामेंटल जो इन लोगों की सोच का मुझे लगता है कि फेर है, या उसमें जो गलत तरीके से लोग सोचते हैं कि भाई नेचुरल होम यदि कहा जाए, जो बॉर्डर से सटे हुए 3 राष्ट्र हैं उनमें जो माइनॉरिटी है उनका नेचुरल होम भारत ही है। क्रिश्चियंस को अगर आप हटा दें तो भारत के ही लोग वहां पे थे, कल्चर सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। तो हम जो है नेचुरली जिनको प्रोटेक्ट करने का वादा नेहरू के टाइम में किया गया था, और विभाजन के समय पे ये एक मतलब डॉटेड लाइन पे लिखा गया था और बोला गया था कि भाई आप हमारे यहाँ की माइनॉरिटी, मतलब हमारे यहाँ के लोग जो आपके यहाँ माइनॉरिटी हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे और हम जो है आपके यहाँ करेंगे। तो हमने तो भैया यहाँ पे मंत्रालय बना रखे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वक्फ जैसे हेविली टिल्टेड कानून है, एजुकेशन को यदि आप ले लें तो स्पेशली वो है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑलरेडी है जिसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके उसका डिफेंस करते हैं। लेकिन बाकी जो जगह पे वहां पे तो जनसंख्या लगातार ड्विंडल करती जा रही, क्या मुसलमानों की भी जनसंख्या घटी है? क्या मुसलमानों को भी प्रताड़ित कर रहा है? कौन कर रहा है? मुसलमान ही कर रहा है ना, अगर अहमदिया, सुन्नी, LGBTQ और फलाने ढिमके की हम बात करें तो भाई वो फिर तो हो जाएगा कि पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं खोल देते। जो लॉजिक ये दे रहे हैं कि भाई अपने मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों, फिर तो कह दो कि ये 3 जो बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं वही क्यों, चीनी लोग को हम क्यों नहीं असाइलम दे? तो ये मतलब मेरा एक एक राष्ट्र के तौर पे ये मेरा विशेषाधिकार है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि हम किसको दें। हो सकता है बांग्लादेश को नहीं देते, अफगानिस्तान वालों को नहीं देते, हम खाली पाकिस्तानी हिंदू को देंगे, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि वहां के हिंदू सबसे अधिक प्रताड़ित है, वहां के सिखों की संख्या शून्य की तरफ जा चुकी है, वहां पारसी नहीं बचे। तो उस हिसाब से ये मैं तय करूंगा, नो बडी इज गोइंग टू फोर्स मी कि आप उसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं इंक्लूड। इस एक्ट से भारतीय सिटीजनशिप का मतलब भारतीय नागरिकों का कोई लेना देना है ही नहीं, तो हमें रोने गाने का तो कोई अवसर ही नहीं है कि हम क्यों बिना काम करूंगा रहे। ये दूसरों के लिए है जो ऑलरेडी मतलब मर रहे हैं, जिनकी बच्चियां रोज खींची जाती है, जिनकी पत्नियां ले जाई जाती है, और बच्चे जो है रेपिस्ट के होते हैं जिनको वो स्वयं पाल, इस तरह की कहानियां हैं। तो उस हिसाब से, और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो प्योरली केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जितने कानून आए पिछले 10 वर्षों में, हर कानून को ये लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, और हर बार ये हारते भी हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो दे आर जस्ट अपोजिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, इसका और कोई कोई आधार नहीं है जिसको आप लॉजिकल कह के, रैशनल कह के उस पर डिबेट भी कर सके, कुछ नहीं है। डिबेट करने के लिए वही है कि कह देंगे चीन वालों को आप क्यों नहीं, चीन वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है, वर्मा से आपने बॉर्डर क्यों क्लोज कर दिया, थाईलैंड वाले यहाँ क्यों नहीं आ सकते।
नहीं, एक बहुत विचित्र सी बात क्या कही है कि वो याद होगा वरुण ग्रोवर ने ये पूरा ये शुरू किया था, अजीत कागज नहीं दिखाएंगे, बराबर। अच्छा, मजे की बात है, मैं इंडियन एक्सप्रेस का क्यू क्वेश्चन का वर्बैटिक एक एक है ना एक एक, एक, एक कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं। मेरे को बहुत हंसी आई क्योंकि मेरे दिमाग में कागज नहीं दिखाएंगे आ रहा था, तो एक्चुअली में मेरे को लगता है भारत सरकार ने कागज नहीं दिखाएंगे को सीरियसली ले लिया, क्योंकि अभी सीए का ये व्हाट प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द कंट्री ऑफ ओरिजिन अंडर सीए, ये प्रश्न है इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, और उसमें उत्तर सुनने वाला है अंग्रेजी में। द रूल्स हैव बीन रिलैक्स वेरी सिग्निफिकेंटली। द अर्लियर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ अ वैलिड रेसिडेंशियल परमिट ऑफ इंडिया हैज बीन वर्चुअली डन अवे विद। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो वैलिड पासपोर्ट दिखाना था पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, वो तो निकाल ही दिया है अभी भारत सरकार ने। अकॉर्डिंग टू द सीए रूल्स, अ बर्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, कोर्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, एनी लाइसेंस और सर्टिफिकेट, लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाई दीज कंट्रीज विच प्रूव्स द एप्लीकेंट वाज देयर सिटीजन वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मतलब बेसिकली आपके पास पाकिस्तान का ड्राइवर्स लाइसेंस होगा या कोई आप भाड़ा देते हैं उधर, कुछ ऐसा टेनेंसी एग्रीमेंट या कुछ भी होगा वो, मतलब इतनी बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन कर दी है। और ये सेम लॉट भारत सरकार को कहता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भारत सरकार बोलता है ठीक है मत दिखाओ, इनको आने दो, कागज नहीं।
नहीं, मेन वही है ना कि तुमसे मांगा किसने कागज, वरुण ग्रोवर या इसका जो पूरा समूह है उससे कागज मांग कौन रहा है भाई। ये जो कह रहे हैं कि मेरी कागज बकरी खा गई, मेरा कागज 2002 के दंगों में जल गया, तुमसे मांगा किसने, मांगा तब जाएगा जब एनआरसी लागू होगा, और वो भी तुम यदि बंगाल के हो, तुम जो है असम के हो, वहां से एनआरसी का आरंभ होगा, और बाद में फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और ये एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। तो उस वक्त के लिए मतलब तैयार रखना, और नहीं दिखाओगे तो फिर जाओगे डिटेंशन सेंटर में, तो उसके लिए भी इनको तैयारी करनी चाहिए।
नहीं, मगर एक एक अच्छा, ये इसके ऊपर थोड़ा मेरे को, मेरा एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं बोलूंगा, ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट विद द लॉ है। मगर उसके पहले कि मैं मेरी डिसअपॉइंटमेंट शेयर करूं, अगेन मेरे को एक मूट फिलोसॉफिकल इशू के ऊपर बात करनी है। कुछ लोग सीएए को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो इमोरल है, लॉ को इमोरल बताया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि लॉ ही गलत है। ये कंसेप्चुअली बहुत ही घटिया चीज कर दी है भारत ने कि आप मुसलमानों को नहीं ले सकते। तो अजीत, मेरे को ये प्रश्न पूछना है कि फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ था?
जब विभाजन हो गया और उसके बाद फिर चले गए और प्रताड़ित तो वैसे भारत में भी लोग हैं, मुसलमान तो क्लेम कर ही रहे हैं ना कि हम प्रताड़ित हैं, हम सेकेंड रेट सिटीजन हैं, हम थर्ड और फोर्थ रेट हैं, हम फांसीबाद आ गया, फलाना ढिमका आ गया। तो इन लोगों को क्या कहा जाए। और जहां तक इमोरल बोलना लॉ को, और उसके बेस में यही है कि आपने मुसलमान को कैसे मतलब एक्सक्लूड कर दिया, और आप इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस तरह के कानून को लेकर के आए। फिर बात घूम फिर करके वही आती है कि भाई प्रताड़ना या रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है, उसका एक डेफिनेशन तो है ना, ये तुम कैसे। फिर तो कह दो ना कि भाई अब्दुल जो है अपनी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था, तो ठीक है तुमने उसकी बेटी के लिए मतलब, अगर वो सुन्नी भी है तो भी वो प्रताड़ित है, तो उसको क्यों ना लिया जाए। तो भाई ये मतलब होटल थोड़े, होटल नहीं खुल रहा है कि एवरीबडी जो भी आएगा उसको हम एडमिशन देंगे। राइट टू एडमिशन मेरे पास है कि हम किसको अलाउ करें या ना करें। और दूसरी बात, जहां तक मुसलमानों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि दे कांट गेट इंडियन सिटीजनशिप, वो लॉज अभी भी इंटैक्ट है, वैसे ही है। यहाँ पे है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का शिकार है उनके लिए रिलैक्स किया गया और फास्ट ट्रैक किया गया। ऐसा नहीं है कि ये जो आज केजरीवाल बोल रहा था कि वहां पे 3 करोड़ के लगभग है मुसलमान हिंदू, और ये जो माइनॉरिटीज हैं उसमें से मान लीजिए 1.5 करोड़ यहाँ आ गया तो हम कैसे रखेंगे, किसको जॉब देंगे। भाई 1.5 करोड़ नहीं आएगा। और जॉब देने की बात और रखने की बात तुम पूछ रहे हो, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे मतलब दिल्ली के एक्सचेकर के पैसे का मिसयूज करके, तो तुम तो कम से कम नहीं बोलो। और एक एक व्यक्ति जो भी सीख कर रहा है, डॉक्यूमेंट में भले ही रिलैक्सेशन है लेकिन उसका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा कि वो वहां पे क्या कर रहा था। पाकिस्तान में हमारे एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, तो दे विल गेट इन टू इट। वो हाई कमीशन और इसके लोग जो है वो जाकर देखेंगे, पता करेगा, उनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग होगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप टिकट लेके पहुंचे कि ये रहा ड्राइवर्स लाइसेंस, आ जाओ इंडियन सिटीजन बन गए, तो इस तरह से तो है नहीं। आप अप्लाई करोगे, उसके बाद एक्चुअल में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस देखी जाएगी, तुम जासूस वासूस तो नहीं हो, उसके बाद आएगा। तो फिर वो इमोरल कहना और फलाना ढिमका, ये वही वो इनके मन की बातें, अभी जो भी कह लें, जो भी कह लें, लॉ कब से इमोरल और फलाना, मतलब ये समझ में नहीं आता। वामपंथियों की यही बात मुझे बहुत भाती है एक तरह से, कि वो किसी भी चीज को ना इस तरह के इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जो विरोधाभासी शब्द है, जो चीज नहीं होता उसको मतलब ढंग से सेलेक्ट कर लिया है, चुना है चुनाव के माध्यम से, तो उसको बोल देंगे नहीं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी ये चल रहा है। तो बढ़िया बढ़िया शब्द ला के इनको ऑर्गेज्म मिलता रहता है, और इससे इतर ये कुछ भी नहीं है। तो अपना ऑर्गेज्म फील करने दीजिए जो जिनको ये मॉरल लग रहा है।
मगर इस इमोरलिटी पे, क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, उसका रीजन है मेरा फिलोसफी का बायस, और कोई कारण नहीं है। मुझे इमोरलिटी हमेशा फैसिनेट करती है। तो जब आप कहते हो कि एक एक्ट इमोरल है, इसका मतलब है कि आप किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो। ऑब्जेक्टिवली आप मेजर कर सकते हो कि किसी का नुकसान हो रहा है। असल में मालूम है इनको प्रॉब्लम क्या है? ये लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं। मैं खुला कह रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। देखो, मेरे लिए ये लॉ की डिसअपॉइंटमेंट है, वो मैं बाद में बात करूंगा। मेरे मेरे को है बहुत, मुझे है। अभी लोग बोलोगे कुशल तेरा एथियस्टिक या नास्तिक बायस है। अरे है तो है भाई। मैंने मैंने देखा है उधर एथियस्ट के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, और मेरे आंखों में एथियस्ट एक हिंदू है। मेरे हिसाब से एक एथियस्ट एक हिंदू है, तो मैं उसको हिंदू के जैसे ट्रीट कर रहा हूँ। मगर मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट थी कि जब लॉ ने एथियस्ट एज अ कैटेगरी को सेपरेटली नहीं लिखा, जो कि इवन हिंदू सिविलाइजेशन का पार्ट रहे हैं। मेरे जैसे लोग आज भी अपने आप को हिंदू ही बोलते हैं। मगर वो, हैविंग सेड दैट असाइड, जस्ट बिकॉज एक्स इज नॉट मेंशन डज नॉट मीन दिस लॉ इज इमोरल। हाउ इज केयरिंग फॉर अ हिंदू सिख? और ये हिंदुत्वा लॉ कैसे हो सकता है? अगर हिंदुत्वा लॉ होता था, जो इनकी डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व है, ये जो बोलते हैं इनकी तो क्रिश्चियन नहीं होते थे ना इसमें, पारसी नहीं होते थे ना इसमें। क्योंकि अच्छा, दूसरा मेरे को है ना, एक थोड़ा ये समय स्पेंड करना है, ये जो ये गुगली फेंकी जा रही है ना, अहमदिया वाली और हजारा वाली, ये गुगली है। मेरे को एक बात बताओ, भारत ये, और मुझे आपका भी ये थोड़ा इस पे, आपकी क्या सोच है इस पे? क्योंकि मैं इस पर बहुत, मैंने जेन्युइनली सोचने की कोशिश, क्योंकि मेरे को भी बुरा लगता है जो अहमदियों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में। मेरे को कोई सेलिब्रेशन करने वाली चीज नहीं है वो जो उनके साथ हो रहा है। मगर पॉइंट ये है कि मैं ये भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहता कि क्योंकि उन्होंने आजादी के आंदोलन में या विभाजन के का उन्होंने समर्थन किया था, बाय द वे क्रिश्चियन चर्च ने भी किया था, FII। अगर आपको वो ऐतिहासिक आर्ग्यूमेंट देनी है तो आप नहीं बोल सकते हो क्रिश्चियन को हाँ और अहमदियों को ना, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। क्रिश्चियंस ने भी तभी वोट किया था, अहमदियों ने भी तभी वोट किया था विभाजन के लिए। पॉइंट ये नहीं है, अगर हम अहमदियों को अलग गिनते हैं तो अजीत एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिर हम पाकिस्तान की बेसिक जो लॉजिक है और थिंकिंग है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज राइट, अहमदीज आर नॉट मुस्लिम, बिकॉज इंडियन लॉ तो उनको मुसलमान मानता है ना, तो इसका क्या इलाज है फिर?
अब फिर वही है यार, 72 फिरके हैं। शिया वाले सुन्नियों के मस्जिद में बम धमाके करते हैं, सुन्नी वाले। तो जो इनकी अपनी फाइट्स है, जो इंटरसेक्शनल फाइट कह लो और इंट्रा रिलीजियस फाइट कह लो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। वो मतलब वही है ना कि नेचुरल होम तुम्हारा ये नहीं, 57 देश हैं तुम्हारे पास मुसलमानों के पास जाने के लिए, तुम एक जगह परसिक्यूट हो रहे, दूसरे जगह पे चले जाओ। यहाँ पे बात, और दूसरी बात यह भी है कि क्या हमारे पास उतने लोगों को लेने का वेयरविदॉल्स है, संसाधन है हमारे पास? हमने माइनॉरिटी चुना है तो कुछ सोचकर चुना होगा ना। पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हम वीडियो देखते रहते हैं, जो इंडिया को एडमायर करते हैं। वो क्यों एडमायर करते हैं? क्योंकि यहाँ लिविंग कंडीशंस बेटर है मुसलमानों के लिए भी। फिर तो तुम खोल दो तो आधा पाकिस्तान इधर आ जाएगा, और पाकिस्तान जब आधा इधर आएगा, आधा नहीं 10%, 1% भी आ, वो यहाँ पे करेगा क्या? क्या वही अहमद या वही शिया, वही LGBTQ, वो दारू सलाम और पलाने के लिए प्रयासरत नहीं रहेगा, जो उनके फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम में, जो जो उसी किताब में आज भी अहमदिया ने कुरान अबेंडन तो नहीं किया ना? जब बाकी सब होता है हिंदुओं का विरोध करना है, काफिरों का विरोध करना है, तब तो तुम तलवार लेके साथ खड़े हो जाते हो, तब तो तुम सारे फिरके भूल जाते हो। तो इस कारण से उनका जो प्रोसिक्यूशन है फलान, हमको उससे कोई मतलब नहीं है भाई कि ग्रीस में किसके साथ क्या हो रहा है। हमको इससे मतलब लेना देना है कि मैं एक राष्ट्र के रूप में भारत, यहां से जो जो धर्म निकले या यहाँ के लोग जो पार्टीशन की वजह से अलग अलग जगहों पे चले गए, और वो उन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, हम उनके लिए प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। बाकी भी जो अगर शरण चाहते हैं, शरणागति, तो आए, उनके लिए अलग लॉ है। इनके लिए 6 वर्ष में अगर नेचुरलाइजेशन और ये है तो उनके लिए 12 साल का होगा। तो रहो यार, तुम सीख करो। रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहाँ भगा दिया भारत? 2.5 करोड़ से अधिक हैं ये दोनों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में तो फेंक नहीं दिया ना, यहीं पे लोग रह रहे हैं ना, उनकी अपनी कंट्री लेने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ये लॉजिक जो है ना कि आपस में प्रोसिक्यूशन चल रहा है, बहुत स्थिति बुरी है तो है, मैं इसमें कंप्लीटली एकदम डिस्पैशनेट होके देखता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारी आस्था उस पुस्तक में है जिसमें 26 बार मेरी हत्या की साजिशें रची जा रही हैं, जब तुम उसी जिहाद के लिए प्रयासरत रहोगे, तुम जब वही गजवाए हिंद के सपने देखोगे, तो फिर आई डोंट वांट यू है। जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी दे आर ए पेन इन द आस, वो हम भोग रहे हैं, और जो बाहर से आते हैं वो भी हम भोग रहे हैं। तो इस कारण से कि मैं अपनी सेफ्टी, ऑलरेडी मैं असुरक्षित हूँ अपने ही राष्ट्र में, मैं बाहर से इम्पोर्ट मुझे नहीं करना, वहां पे पीड़ित दिखा करके तुम यहाँ पे जो है घुसना चाहते हो, तो इस कारण से मैं इसको अपोज कर रहा हूँ। जिसको करना है एक्स मुस्लिम बन जाओ भाई, तुम रहो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें चाहिए कि तुम अबेंडन करो अपनी किताब को और तुम हिंदू बन जाओ, उसके बाद सीख करो, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या होता है।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इस में कोई बात नहीं करना चाहता है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे कदम उठाए गए हैं। 2002 में राजस्थान ने तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी से मदद मांगी थी कि भाई ये पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या करना है। तो तभी भी फरवरी 2004 में, तभी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप रूल्स को अमेंडमेंट किया था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सर्टन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, गुजरात और राजस्थान में, उनको LTVs और सिटीजनशिप दे दी जाए। 2002 से 4 की मैं बात कर रहा हूं। फिर 2010 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे,
तभी भी होम मिनिस्ट्री ने और कुछ यूनियन टेरिटरीज को बोला था एलटीवीज कंसिडर करो, और नोटिफिकेशन का कट ऑफ डेट शायद कुछ 31 दिसंबर 2009 तक रखा था, ये 2010 में न्यूज आई थी तभी है। फिर उसके बाद ये 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी अलाउइंग ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू सम। फिर 15-16 में गवर्नमेंट ने पासपोर्ट की जो अमेंडमेंट की थी, एंट्री इनटू इंडिया रूल्स एंड द फॉरेनर्स ऑर्डर व्हिच वाज एग्जेम्प्टिंग सर्टेन पीपल, और फिर 2018 में ये आया। ये क्यों इतिहास शेयर करना बहुत आवश्यक है कि ये जो ये बार बार ये जो होता है शगुफा छेड़ा जाता है सडनली, वो जो कौन सा था वो पाकिस्तानी जिसने बोला था वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीरें बदल गई,
हाँ
ये जो हमेशा साले, ये जो हमेशा ये जो फ्रॉडिये जो है झूठ बोलते हैं, तो क्या 2002? अच्छा, और मैंने क्या दिखाया, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी किया, वाजपेयी सरकार ने भी किया, और मोदी की सरकार ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया, ये पहले भी हो चुका है। जब ये बार बार, जिसको अंग्रेजी में पता नहीं हिंदी में इसका क्या कहेंगे, आधा अधूरा करना, पीस मील कहते हैं ना अंग्रेजी में, पीस मील प्रोसेस, जो आधा अधूरा करना, मोदी सरकार को फिर कुछ लीगल ईगल्स ने बोला कि यार आप ये, हम हर टाइम क्या होता है, कुछ लोगों की आवाज आती है, आप लोग बोलते हैं चल 500 लोगों को दिया, चल 5,000 लोगों को दिया, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूं। तो सरकार ने सोचा कि यार एक बार है ना इसको फॉर्मलाइज कर देते ताकि कम से कम ये लोग तो आ जाएं। अब मगर एक इश्यू उठता है अजीत, कि मेरी ये सोच है, अगेन आप पता नहीं आप मेरे से सहमत होगी कि नहीं, मैं भारत को हिंदू राज्य नहीं मानता, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक मानता हूं। मेरे हिसाब से भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू का अर्थ मेरा सिर्फ सनातन धर्म नहीं, मैं इसमें सिखों को, बौद्धों को, नास्तिकों को और बहुत सारे पंथों को जो भारत के नेटिव पंथ हैं, जो सर्व दर्शन संग्रह के अंदर आ सकते हैं, जिसमें आस्तिक और नास्तिक दोनों गिने जाते हैं, मैं उनको, भारत एक उनके लिए घर होना चाहिए, मैं इसको बिलीव करता हूं। और मेरे हिसाब से इस ये लॉ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, ये 2014 का कट ऑफ क्यों साला, इसका क्या, ये सरकार को गाली नहीं देनी चाहिए हमने, ये क्या है भाई 2014 को कट ऑफ कर दिया तुम लोगों ने।
हाँ नहीं, इसको मुझे लगता है कंटिन्यूअस प्रोसेस रखना चाहिए था। आप 2014 तक वाले को ठीक है, आप प्रोसेस अभी कर दो, अगर आपके पास डेटा है तो फास्ट ट्रैक कर दो, फिर ये कट ऑफ हटना चाहिए।
बिल्कुल
क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो यार 2014 के बाद हमने देखा, इतनी ब्रूटल तरीके से चल रहा है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, और अफगानिस्तान से तो माथे पे सिख जो है आए थे गुरु ग्रंथ
आखिरी गुरु
साहिब
ग्रंथ
लेकर।
साहब लेके आए थे।
हाँ, तो वो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको भी उसी तरह से रखना चाहिए था। लेकिन मुझे अभी क्या लग रहा है कि 2014 तक वालों में इनके पास डेटा इकट्ठा होगा, वो सब करके इन्होंने किया है, ये लॉ फिर से अमेंड होगा, इसमें क्लॉजेज जो है जोड़े
होपफुली
जाएंगे, और इसको जो है ऐसा बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा कि कभी से भी लोग आ रहे हैं और सीख कर रहे हैं, तो उनको एक, जैसे नॉर्मली 6 साल का प्रोसेस होता है नेशनलाइजेशन का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और मिल जाएगा आपको, तो उसको 3 साल कर दो, 2 साल कर दो, अगर आप मतलब उन लोग, क्योंकि उनके लिए जीने खाने सबकी विपत्ति है। मैं मजनू का टीला में, यहाँ पाकिस्तानी
मैं कह रहा
रिफ्यूजी
हूं,
रहते
मैंने
थे।
डोनेशन
हाँ,
भी दिए उधर।
तो उधर आप, उधर स्थिति बहुत विकट है, लेकिन वो लोग फिर भी वहां पे प्रसन्न है कि कम से कम मेरी बीवी तो खींची नहीं जा रही यार, मेरे बच्चे हो रहे हैं, मैं ठीक है दिन का मोबाइल कवर बेच के और ये सब करके किसी तरह रह रहा हूँ, यहाँ पानी मिल रहा है, बिजली आती है जाती है, कोई हमें समस्या नहीं, वहां जो हम फोर्स कर, कई लोग तो ऐसे थे जिनका आधा परिवार वहीं रह गया, माँ बाप को छोड़ करके बच्चे जो है अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ इधर रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे आए और यहीं पे रह गए, बोल रहे कि हम उस शिट होल में नहीं जाना चाहते। तो ये सारी चीजें जो है वो हम और आप या कोई भी व्यक्ति इस तरह से वो देख रहा है, और इनकी व्यथा इतनी विकट है कि आप एक बार में नहीं कर सकते। और उधर जब तक मोदी इधर है ना, उसके रिटेलिएशन में वहां वो प्रताड़ना जो है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है,
बढ़ती है, बढ़ती है मियां
वो
मिट्ठू
लगातार, खास
आराम
करके
सादा।
हाँ सिंध वाले क्षेत्र में, तो वो खास करके दलित लोग जो उधर हैं, एक तो अनटचेबिलिटी वहां मुसलमान अधिक प्रैक्टिस करता है, और दूसरा रेप और उनके लैंड को ग्रैब कर लेना, ये तीन चार प्रॉब्लम्स है, परवेसिव है एकदम, कोई उससे अछूता नहीं। वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम इसी तरह, इसीलिए जो आप बोल रहे थे ना कि उसी क्लॉज में भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट एक लाइन लिखा जाता कि भारतीय ज्ञान धर्म दर्शन परंपरा से उत्पन्न जितने भी धर्म और पंथ हैं उनके लिए भारत पूरे विश्व के
रखना
ऐसे
चाहिए।
लोगों के लिए एक प्राकृतिक घर है, नेचुरल होम है, यू कैन
यस
ऑलवेज कम है, हम आपको
यस
ओपन हैंड से एक्सेप्ट करें।
और मुझे तो सबसे बड़ी चोट इसी बात में पहुंची थी अजीत। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, मैंने पाकिस्तान में, मैंने उनको इंडिया में आने की मदद नहीं की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, देखो जब जब आप एथी सर्कल्स में होते हो तो आपको नेचुरली उधर से खबरें आती हैं, पाकिस्तान से आती है, बांग्लादेश से आती है। यार वो बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हालत देखो, जो यार मैं बोलूं, मैं उनके गुदे की तारीफ करता हूँ। वो साले आज भी उधर रह के लिखते हैं, आज भी उधर रह के लिखते हैं, मतलब सल्यूट मारता हूं मैं उनको। तो कुछ साल पहले का किस्सा बताता हूँ। एक ऐसा एथीस्ट था, वो कुछ दिनों के लिए वेकेशन के लिए इंडिया में आया। मेरे को आज तक गिल्ट है उसकी, क्योंकि मैं उसकी मदद, वो एक एथीस्ट की मैं मदद नहीं कर पाया। वो कलकत्ता आया था तो किसी से पता नहीं मेरा नंबर मिला, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने बोला कि ब्रदर आई डोंट वांट टू गो बैक, आई एम अ बांग्लादेशी ब्लॉगर, दे विल किल मी इफ आई गो बैक, बट कोलकाता पुलिस हैज ट्रैक मी एंड दे वांट मी टू गो बैक टू बांग्लादेश, तो कैन यू हेल्प मी। अनफॉर्चुनेटली तभी ये सीए और ये सब कुछ नहीं था, एंड आई कुड नॉट हेल्प हिम, एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट आई कुड नॉट हेल्प दैट यंग बॉय हु इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। आई होप ही इज अलाइव एंड ही वॉचेज दिस पॉडकास्ट, एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू हिम दैट आई कुड नॉट हेल्प हिम। बट पाकिस्तान के कुछ दो तीन लोगों की जरूर मदद की थी जो एथीस्ट थे। एक कहानी ये थी कि वो, उसकी माँ ने ही उसको आउट कर दिया और उसको ऐसे रेप किया और उसके ऊपर सिगरेट बट्स मारे और ये सब किया था, तो उसको हमने मदद करके, कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो एथीस्ट हैं, मैं, हम लोग सबने मिलके थोड़ा बहुत जो भी करके उसको वेस्ट में भेजा, दो तीन लोगों को वेस्ट में, इंडिया में, भारत में कोई नहीं आया। मैंने खुला बोल दिया था, भाई तुम पाकिस्तानी हो और भले तुम एथीस्ट हो, तुम्हारा तो पत्ता साफ, तुम भारत के सपने मत देखो। जबकि अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं कितनी बार इन लोगों से बात करता हूँ ना जो ये एथीस्ट होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ तुम वेस्ट क्यों नहीं जाते, बोलते नहीं जाना उधर। बोला क्यों? बोलता नहीं हमको आदत, एट द एंड ऑफ द डे तो है तो ये हमारे जैसा ही देश ना, तो हमको रहने की आदत है, हमको भाषा तौर तरीके ये सब चीजों की। तो मेरे लिए डेफिनेटली एक पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी, मगर अभी इसमें एक और बड़ी विचित्र सी एक, इसको मैं गूगली ही बोलूंगा, आई है कि अभी हंसी मुझे बहुत आई जब मैंने सुना लेफ्ट विंग से एक क्रिटिसिज्म, यू आर एंटी हिंदू, व्हाई हैव यू नॉट कवर्ड श्रीलंकन हिंदूज एंड बर्मीज हिंदूज। ये लेफ्ट कैसे बीजेपी को एंटी हिंदू बुला रहा है, मेरे को बहुत हंसी आई जब मैंने किसी का ये क्रिटिसिज्म। तो इसका क्या आंसर है कि बात तो सही है कि फिर श्रीलंकन हिंदू क्यों नहीं और बर्मीज
यार
हिंदू
फिर
क्यों नहीं?
वही मैंने बोला ना, ये बोल देंगे चाइनीज को क्यों नहीं लिया आपने, तिब्बतन से आपको क्या समस्या थी, हालांकि तिब्बत तो आधा यहीं पे बसा हुआ है, एंड दे कुड हैव गोन टू इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा के द्वीप तक ये जा सकते थे, कंबोडिया जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। जापानियों को भी बोलते वहां भी बहुत लोगों को मिसट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो भी आ सकते हैं। कुछ प्रश्न जो होते हैं ना उसका उत्तर मतलब सीधा स्पष्ट उत्तर होता नहीं, उसको यही है कि तुमने चीन वालों को क्यों नहीं बोला कि आने के लिए, तो इसी तरह से उत्तर दिया जा सकता है। हम वहां पे अब श्रीलंकन हिंदू है तो वो यार हिंदुओं का और बौद्धों का ही देश है, वहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं है उस तरह से, और
अब
हम
नहीं है।
डिसाइड कर रहे हैं कि लैंड बॉर्डर ना ही ऐसा था कि जब विभाजन हुआ था तो लोग जो है उनका इन्फ्लक्स जो है वो श्रीलंका में भी हुआ था, वो तो पहले से ही उसी तरह के। फिर बोल दो कि तुम्हें नेपाल वालों से क्या समस्या है, भूटान वालों से क्या समस्या है, तो इनका इंटेंट वो नहीं है, इनका इंटेंट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे था कि अरे बताओ तुम यार फॉलो नहीं कर रहे हो, साला कम्युनिस्ट बताएगा हमें कि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र और मतलब जो जो जिस तरह से किया जाता है 11 दिन का उपवास और व्रत, ये वामपंथी हमें बताएंगे कि तुमने किए। तो वही है कि वामपंथी जो रिलीजन को रिजेक्ट करता है, भाजपा को हमेशा बोलता रहा कि तुम हिंदुत्ववादी हो, उसको कंसर्न हिंदू सिटीजंस के लिए है, तो वी कैन यस जस्ट लाफ इट ऑफ, और उसको उत्तर देने की आवश्यकता है नहीं।
आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था पहले, कि आपने बोला था कि इवन परसिक्यूशन में अर्जेंसी ऑफ एन इशू होता है। आज की डेट में जो मियां मिट्ठू सिंध में कर रहा है,
और ये इसके पहले ही बोले ना, हर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी ने मियां मिट्टू को कोट किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑफ इमरान खान, वो उनको ज्वाइन कर चुका था फॉर्मली। व्हेन शिट हिट द रूफ तब उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया मियां मिट्टू से। तब तक ये लोग मियां मिट्टू को एंटरटेन करते थे। अगर जो ये सुनने वाले जो नहीं जानते हैं मियां मिट्टू कौन है, कसम खा के कह रहा हूं टीवी फोड़ दोगे, मगर जाके एक बार गूगल जरूर करना मियां मिट्टू क्या चीज है। इतना घटिया थर्ड क्लास किस्म का इंसान है। इसके लिए मैंने बोला ना, उसको तो मैं जितनी गालियां दू उतनी कम है, और वो मतलब वो डिजर्व करता है। अब श्रीलंकन हिंदूज के साथ जेन्युइन जो हुआ था वो गलत ही हुआ था, और आज भी मैं कहूंगा वो गलत हुआ था, मगर आज की डेट में दैट सोसाइटी इज नॉट इन दैट स्टेट व्हिच इट वाज मे बी टिल द 90s। सो आई स्टिल फील वी शुड एम्ब्रेस देम, आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस। इनफैक्ट श्रीलंकन को तो मेरे हिसाब से वीजा रिलैक्सेशन ही कर देनी चाहिए। तो भले आप श्रीलंकन बुद्धिस्ट हो या श्रीलंकन हिंदू हो, वो वी द सोल्यूशन इज नॉट ग्रांटिंग देम सिटीजनशिप। द सोल्यूशन कुड बी श्रीलंकन के लिए वीजा रिलैक्सेशन कर दो ना। यू कुड बी अ श्रीलंकन बुद्धिस्ट, यू कुड बी अ श्रीलंकन हिंदू।
अरे डूब रही थी ना इकोनॉमी, किसने मदद किया?
हमने ही किया,
भारत ने भेजा ना भाई। We provided them relief, और उसके राष्ट्रपति ने, उसके प्रधानमंत्री ने, सबने बोला। एंड उन्होंने चीन के साथ जो जो कुछ कुछ किया, जो संबंध जो है बिगड़े भारत के साथ उसके, फिर भी भारत आउट ऑफ द वे जा करके वी हेल्प देम आउट जब उनको क्राइसिस हुआ था तब। तो ये क्या मतलब बड़ा हृदय नहीं है? ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि ये लोग भी कल्चरली जो है सिमिलर है हमसे सबको, मतलब उठा के हम अपने यहाँ क्यों लोग, वहां जमीन कम हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना। और जो लिट्टे के टाइम में था, जो सिंगलीज और तमिलियंस का अपना इशू था, अब वो बहुत हद तक सॉर्टेड आउट हो गया है, उनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक हो गई है। तो लेवल ऑफ प्रोसिक्यूशन और अर्जेंसी जो मैं बोल रहा था वो उतनी अधिक नहीं है, और होगी तो यार रास्ते खुले हुए, वो हमेशा यार नाव में भर करके पहुंचते हैं कि नहीं, उनको लौटा थोड़े देते हैं, उनको भी रखते हैं। कई बार कोस्ट गार्ड भेज भी देते हैं, कई बार रखते भी हैं उनको डिटेंशन कैंप में या जहां पे भी, तो रखा तो जाता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लीटली अबेंडन कर दिया, और हमने मालदीव वाला इतना बवाल काटे हुए फिर भी हम उसकी सहायता तो कर ही रहे ना, अभी भी उनको कुछ करोड़, 600 करोड़ या ऐसे कुछ रुपये भेजे गए। तो ये सारा जो है वो चलता रहेगा। ग्रांटिंग सिटीजनशिप इज नॉट द ओनली वे टू हेल्प देम, और भी तरीके होते हैं। उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी यार, उसको बचा लिया भारत ने श्रीलंका को। उनके पास जब इकोनॉमी इस तरह से शिटी कंडीशन में चली जाए, तब फिर आपको पर्सिक्यूशन और ये धर्म और नहीं दिखता है, मेरे गाड़ी में तेल है कि नहीं, मेरे घर में भोजन है कि नहीं, इस तरह की समस्याएं होती है, और उसको सॉल्व कर दिया। अब तुमको नहीं, वो उसको जो क्रेन से खोद करके श्रीलंका को चिपका दो भारत में और वहां पे दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो, ऐसे तो होता नहीं।
अच्छा अभी मैं एक छोटा सा 50 सेकंड का क्लिप प्ले करूंगा ताकि तुम सफिशिएंटली इरिटेट हो, मगर मेरे को ये क्लिप प्ले करनी है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, ये क्या आर्ग्यूमेंट इतनी स्पेशल है कि मतलब अभी मैं क्या बोलूं। सो इसको सुनना जरा।
प्रोपेगेंडा टूल, इट्स प्योरली बीइंग डिजाइंड फॉर पोस्चरिंग, फॉर परसेप्शन बिल्डिंग, एंड दैट इज ऑल। इट्स अ no purpose for no one at all is what I believe, because the numbers are too small and insignificant. There are far bigger issues in this country to deal with right now than to focus on according citizenship to residents of other countries who have taken refuge here. Giving them the dignity of citizenship is not an issue of national importance right now. It affects too few people. As for the issue of exclusion of Muslims, that is another farce. I mean, where are those teeming millions of Muslims who are queuing up for citizenship in India? They're non-existent. At best,
ये बड़ी स्पेशल सी आर्ग्यूमेंट थी, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में?
ये है कौन?
ये है पता नहीं कौन, ये वीडियो देखा था, अफरीदा रहमान अली, मैंने ये देखा था ट्विटर पे, ये बड़ा ही स्पेशल सा वीडियो था, और इसकी एक क्लिप आई थी
ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऑफ बीट विद अफरीदा करके था, मैंने ये देखा, मेरे को इतनी हंसी आई ये आर्गुमेंट पढ़ के सुन के, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने बोला मैं अकेला क्यों फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैंने बोला मैं अजीत को मैं लाइव स्ट्रीम पे भी साथ में फ्रस्ट्रेट
इन लोग को लगता है वही लाल रंग का चश्मा पहन लेंगे, थोड़ा घर का माहौल वाहौल बना के, और धीरे धीरे चबा चबा के अंग्रेजी बोलेंगे, और लोग को लगा वाह कितनी इंटेलेक्चुअल है, जबकि विशुद्ध चुतियापा है, एकदम शियर स्ट्यूपिडिटी इसको कहा जा सकता है, उससे विलग ये कुछ भी नहीं है जो इस तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मिनिस्क्यूल है। यही लोग है ना जो चंद्रयान हम भेजते हैं तो बोलते हैं सड़कें तो टूटी हुई हैं। भाई तुम अपने घर के टेबल पे शाम में खाना क्या बनेगा ये तय नहीं कर पाते होगे, अपने घर में आर्गुमेंट तुम अपने बच्चों से हार जाओगे, और तुम तय करोगे कि भारत की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। इन लोगों को क्या लगता है कि चाहे बजटरी एलोकेशंस होते हैं या फिर एक राष्ट्र के तौर पे नीतियां जो बनती हैं, उसमें गरीबी है आपके देश में जब तक, और क्राइम रेट चल रहा है, और सड़कें टूटी हुई हैं, तो आप इन्हीं तीन पे फोकस कीजिए, बाकी आप क्यों कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि 70 मंत्रालय हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है जिसका एक्सक्लूसिवली यही सब काम है, किसको सिटीजनशिप देना है, विदेश नीति किस तरह की रखनी है, कहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है हमारे, मतलब हमारे यहाँ के लोगों से मिलते जुलते लोगों का, या इस तरह की चीजें हैं जो भारत भूमि से जुड़े हुए लोग, संबद्ध लोग हैं। तो वही है ना कि इनका बस चले तो ये जो जीडीपी में 100 रुपया का जीडीपी है ना, तो ये बोलेंगे 100 रुपया पहले तो तुम यार सारी सड़कें बना दो और सबको जॉब दे दो। जॉब कहाँ से दिया जाएगा वो नहीं समझेंगे, जनसंख्या क्यों इतनी अधिक है ये नहीं समझेंगे। तो वही सब सेक्सी लगता है बोलने में, पब्लिक पोस्चरिंग, द नंबर्स आर टू इनसिग्निफिकेंट। तो ये जो साले वही है ना कि सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में एक एक वो एलिटिज्म लेकर के, अभिजाति वर्ग के लोग होते हैं उनको लगता है अरे मतलब अपना ही वीडियो देख करके गजब का मतलब आ जाता, आहा क्या बोला मैंने, कितनी मतलब गजब की मैं लग रहे हैं। और अब तो मोदी बोलेगा कि नहीं, अमित भाई फोन करेगा यार वो मैडम जो है नाराज हो गई, पब्लिक पोस्चरिंग हो रहा है, बंद कीजिए उसका कोई मतलब नहीं है।
सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है, आज 1947 में जो विभाजन हुआ, आज ये ना ये कैसा हो गया है कि, और ये बोलना बहुत जरूरी है कि एक चेक हम दो बार कैश नहीं करने देंगे आपको, नहीं ये बोलना बहुत जरूरी है, लॉस भारतीयों का हुआ, हमने हमारा लैंड दिया आपको, वो हमारा लैंड था, इस देश के हर नागरिक का लैंड था, एक्चुअली मैं उस देश के नागरिकों का भी लैंड था और हमारा भी लैंड था, दोनों का, हम सबका था, मगर आप लोगों ने निर्णय लिया आपको अलग होना है, हमने कड़वा घूंट पी के छोड़ दिया आपका साथ, ठीक है, आप आपके रास्ते हम हमारे रास्ते, उसमें कुछ लोग को आपने नागरिक ही नहीं समझा आपके देश के अंदर, अब हम क्या करें, वो आपकी घटिया सोच है, मगर आज ये कहना कि अरे पास्ट में क्यों जीते हो, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, पास्ट में ये यार ये ऐसा पास्ट है अजीत जो हम भूल सकते हैं भारत पाकिस्तान का?
नहीं भाई, जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं ना वो अपना भविष्य कभी भी अच्छा नहीं बना पाए। तुम उस कौम को ट्रस्ट करने की बात कर रहे हो, उसके पापों को भूलने की बात कर रहे हो जो 1400 साल से एक ही जगह पे अटका हुआ है, वो अपना पास्ट नहीं भूल पा रहा, उस वक्त जो जीवन शैली थी उसी में वो अटका हुआ है, उसी के समय के बनाए हुए प्रिंसिपल्स को लेके वो तलवार लेके निकला हुआ है हर जगह पे। और तुम कह रहे हो कि ये जो 75 साल पहले जिन नीतियों के कारण आज तक हमारा जीवन प्रभावित है, अगर फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाता तो ये बवासीर हमारे यहाँ पे नहीं होता जो रिस रहा है, और एक एक छोटा छोटा घाव बन के हमें लगातार असह्य पीड़ा दे रहा है हर जगह पे। डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं, बम फोड़ रहा है, अभी वो कैफे में ब्लास्ट कर दिया, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग ब्लास्ट करने का, लघु कुटीर उद्योग इनका बमबाजी का चल ही रहा है। तो वो सब उसी के स्ट्रेंथ्स हैं जिनको वहां चला जाना चाहिए था। पाकिस्तान में जाओ बम बनाते तुम साला, गाजी और अब्दाली और इस तरह के जो थे वहां बनाते, यहाँ पे रुक क्यों गए? और रुक गए तो फिर इनकी वो जो है होता है ना कि उसी वक्त इन्होंने सोचा होगा कि नहीं हम तो अलग हो रहे हैं, ये हमारा 1000 साल का युद्ध है, हमें हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। तो ये जो परपेचुअल वार मोड में ये लोग रहते हैं, तो ये कुछ समय इनके हाइबरनेशन का होता है। जो आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेट्स नॉट ड्वेल ऑन पास्ट, जो वामपंथी कहते हैं, वो केवल थोड़ा सा, देयर जस्ट बाइंग टाइम और कुछ नहीं है। कि जब इनको लगता है कि स्थिति हमारे विपरीत जा रही है, तो वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, एंड दे वेट फॉर द अपॉर्चून मोमेंट। आप सुनिए ना, अब ये ओवैसी का सुनिए, इन सब के ऑर्गेजमिक स्टेटमेंट कि हमें अपने लोगों को पहुंचाना होगा, एक समय आएगा जब सत्ता में हमारा भी कोई होगा और उस वक्त हम इनको, इनके ये हैं, इनके मतलब वेट ड्रीम्स, इनके और इनके भाइयों के इस तरह के। तो हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जो अभी तक रजाकारों को डिफेंड करते हैं। तो तुमने जो वहां पे किया सिखों के साथ, जो शवों से भरी हुई ट्रेनें आ रही थी, वहां से आए लोग, उनको तो यहाँ से जाने वाले लोगों का घर मिल गया क्या? यहाँ से जो हिंद मुसलमान, मतलब वहां से उन्होंने अपना घर दिया? नहीं दिया। पाकिस्तान जो वहां पे रुक गए या रहना चाह रहे, तो वही है ना कि कंप्लीट ना लैंड ट्रांसफर हो पाया, ना पॉपुलेशन ट्रांसफर हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी योजना ही यही थी कि तुम यहीं पे रहो, फिर हम एक तीसरा हिस्सा कार्व आउट करेंगे, फिर हम चौथा करेंगे। तो ये 1000 साल 2000 साल का मान करके चल रहे हैं, उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में ना वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं आता। तो जब वो स्वयं नहीं भूल रहे हैं अपने पास्ट को, उनको अभी भी लग रहा है कि वो क्या बोलते थे, हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, इस तरह के जो इनके स्टेटमेंट आते हैं, तो वो कहाँ भूले हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जस्ट, वी आर जस्ट बाइंग आर टाइम। वो बस रुके हुए थोड़ी देर के लिए, ज्यों ही समय मिलेगा केरल मांगे आजादी, फल्ला मांगे आजादी, यही चल रहा है इनका, वही इनका एजेंडा है।
सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि द बर्डन ऑफ सिविलिटी इज नेवर ऑन पाकिस्तान। चलो मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि बर्डन ऑफ सिविलिटी चलो ज्यादा इंडिया पे है, इंडिया ज्यादा सिविलाइज्ड है, वो तो मुझे कोई डाउट नहीं है, वी आर अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी। पता नहीं वहां क्या टट्टी कर रहे हैं ये लोग, मगर ठीक है, वो जाने उनकी टट्टी, वो खुद साफ करें। मगर उसमें सबसे बड़ी विचित्र बात मुझे अजीत क्या लगी है, एक और बड़ी विचित्र बात लगी है, वैसे बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं, और यहाँ पे इनकी सो कॉल्ड ब्राह्मण बनिया पार्टी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे ज्यादा कौन से वर्ग को बिलोंग करते हैं? दलित, ठीक है, सबसे ज्यादा जो अभी हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में, एंड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, विच आर कंसिडर्ड शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। हियर इज अ गवर्नमेंट गोइंग आउट ऑफ इट्स वे ट्राइंग टू हेल्प देम। तो मतलब मेरे को तो इनकी आर्ग्यूमेंट की कंसिस्टेंसी भी नहीं समझ पड़ती है कि साला कभी लेफ्ट विंग बोलता है कि तुम कास्टिस्ट हो, फिर वो बोलता है नहीं नहीं ये कास्ट के सब लोगों को बुलाना, तो है बोलते काय को बुलाया आराम कर, काय को बुलाया तूने उसको। मतलब मैं कई बार मैं मेरा सर खुजाता हूँ। और नहीं, जिन्ना डिड नॉट हैव दिस विजन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बोला जाता है। अबे सालो, मैं तो एक एक ही पुस्तक बोलूंगा पढ़ने को, और वो एक भारतीय की नहीं बोलूंगा, एक पाकिस्तानी की बुक पढ़ लो, इश्तियाक अहमद, डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बुक ऑन जिन्ना पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना जिन्ना को क्या, जिन्ना की क्या विजन थी। आई ऑनेस्टली इट इज द मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ जिन्ना द पर्सन, एंड बाय द टाइम यू फिनिश दैट बुक, मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ मैं खुद बात कर चुका हूँ मैं मेरी पॉडकास्ट पे, आदमी सिर्फ एक ही चीज कंक्लूड करेगा कि जिन्ना वाज अ कम्युनल बिगेट, दैट्स ऑल ही वाज। वो एक वो स्पीच मालूम है अजीत, हमेशा ओ एवरीबॉडी विल बी अलाउड, वो सालों एक कोट कर ही जाते हो, उसके बाकी 5000 कोट नहीं देते, वो नहीं देते वो लोग। तो ये जो एक ये जो बर्डन है ना, हमेशा इंडिया के ऊपर डाला जाता है, नहीं कि मगर हम उनसे बेहतर हैं, तो ये हम उससे बेहतर हैं इसका मतलब कि हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल दें क्या?
फिर वही घूम फिर करके आप देखो ना कि ये लोग जिन जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं अभी, मतलब दलितों के तो मसीहा थे यार, सर्वहारा की लड़ाई, और जो स्थिति भीलों की है सिंध वाले क्षेत्र में, और बाकी भी जो भी शेड्यूल कास्ट के जो मतलब लोग हैं, मैं मिला हूँ यार उनसे, मतलब वो जिस तरह की कहानियां सुनाते हैं वो छाती फट जाती है इस तरह के। और तुम अचानक से जो तुम्हारे अम्बेडकराइट्स, नियो बुद्धिस्ट और ये सारे थे, वो उनके बारे में केयर नहीं करना चाहते हैं। वो अचानक से नहीं, आपने लेकिन मुसलमानों को नहीं दिया। तो ये उसका पैरेलल आप देख लो, जो आपने बोला ना कि 2002 में भी इस तरह के प्रयास हुए, 2010 में मनमोहन ने भी किए, फिर जो है मोदी भी कर रहा है। तो ये अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इस इशू को रिकॉग्नाइज किया गया और कर रहे थे। किसान कानून जो 3 आए थे, जिसको वापस ले लिया गया, सस्पेंशन में डाला हुआ है, वो भी सेम का सेम कांग्रेस लेके आई थी। और यही सारी पार्टियां उसको बोल रहे थे कि हाँ ये बढ़िया चीज लेके आ, लेकिन उसका विरोध करने लगे। तो ये वही है कि अभी भाजपा कुछ भी करेगी ना, उसका विरोध करेंगे, उसके बाद उसको कोर्ट में घसीटेंगे, वहां से हारेंगे, और हारने के बाद भी अपनी रैलियों में उस बात को बोलते रहेंगे, जैसे कि इनको लगता है कि दे कैन एक्चुअली मेक पीपल बिलीव इन दिस काइंड ऑफ शिट, कि भाई हम जो बोल रहे हैं बताओ, वो शर्ट का GST वो तुम भी उतना ही देते हो जितना अडानी देता है। इनको लगता है कि इसी तरह की चुतियापे में जनता फंस करके हमें वोट दे देगी। तो और कोई पर्पस नहीं, और कोई ना इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट इनका ढंग का है, ना ह्यूमैन एंगल से देखा जाए उस पे भी इनके आर्ग्यूमेंट एकदम ही। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कुछ ही लोग को तो ला रहे हैं ना, कम से कम। ऐसा भारत ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को हम लेंगे नहीं, तो दूसरे दरवाजे खुले हुए यहाँ पे। तो वही है कि दे वॉन्ट टू फ्यूल अनरेस्ट इन इंडिया। जो CA का जो शाहीन बाग हुआ था, उसमें भी क्या अफवाह उड़ाई थी कि मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा। CAA में मुसलमान शब्द का भी जिक्र नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि नहीं, ना ही भारत के सिटीजन से उसका कोई लेना देना है दूर दूर तक, और तुमने कह दिया कि नहीं मुसलमानों को निकाला जाएगा। तो वही है, इनको लगता है कि जनता मूर्ख है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा। तो ऐसा नहीं।
अच्छा, मजे की बात यह है, अदनान सामी अपाकिस्तानी अपाकिस्तानी प्राउड इंडियन नाउ, ही इज बीन गिवन इंडियन सिटीजनशिप। तस्लीमा नसरीन एन एथियस्ट, शी चोज टू बिकम अ स्वीडिश नेशनल बट तस्लीमा स्टेज इन इंडिया। आयरनी ऑफ आयरनी, मालूम है तस्लीमा कैन नॉट लीव दिल्ली, शी वो कभी कोलकाता नहीं जा सकती। तस्लीमा नसरीन को रहना किधर चाहिए? कोलकाता में रहना चाहिए एज अ बंगाली वुमन। As a Bengali woman, she should be staying. She cannot stay there. They will not let her stay there. ये है इंडिया के लिबरल्स। एक ओपन एथियस्ट नहीं रह सकती, उसको दिल्ली रहना पड़ता है, क्योंकि उसको वहीं पे प्रोटेक्शन मिलेगी और किधर नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आ नहीं। अच्छा, स्वाति ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आज बोला था कि वो एक मुस्लिम रेफ्यूजीज के जो रहते हैं भारत में, उस एरिया में गई थी बात करने, तो वहां पे उसको एक तजीक मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और स्वाति ने लिखा है, Amiri arrived in India on medical visa for his mother, but have continued to stay here on a long-term visa as they can't go back under Taliban. I asked him about CAA. He didn't know about it, but when explained, welcomed it, saying there is no doubt that, and this is the key portion, Hindu and Sikhs are harassed the most by all groups in Afghanistan. तो भाई इसमें भी ग्रेडेशंस होती ही है ना, ऑपरेशन में भी ओलंपिक्स होती ही है ना। ये तो लेफ्ट का ही है ना आइडिया, Some are more oppressed than the other. तो ये तो ऐसा हो गया कि बीजेपी एक्सेप्टेड देयर ऑपरेशन ओलंपिक्स, देयर लाइक तूने क्यों, हाउ डेयर यू सर, हाउ डेयर यू एक्सेप्ट माय एपिस्टेमोलॉजी। क्या बोले अभी। बट चलो, अभी अभी दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। तो पहले मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ। ये मतलब ये भी एक अजीब सी चीज थी जो मैंने देखा। तो ये वीडियो मेरे को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मिला था, जिसमें एक पुलिस के अधिकारी हैं जो रास्ते पे, ये पता नहीं किधर एग्जैक्ट है, ये दिल्ली का एक पर्टिकुलर स्पॉट है, उस पे ये मतलब जा रहे थे लोग, नमाज पढ़ रहे थे अपेरेंटली, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते लोगों के ऊपर पुलिस अधिकारी फुटबॉल किक के जैसे उनके पिछवाड़े पे लात मार रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है फॉर सम ऑड रीजन, मगर मैं बेसिकली यही है, पुलिस मैन वॉज किकिंग सम रैंडम मुस्लिम्स प्लेइंग और प्रेइंग ऑन द स्ट्रीट। सो इसका अभी मैं फर्स्टली ऑन द रिकॉर्ड में ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी एंगल से पुलिस ऐसे किसी भी नागरिक को लात मारने को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मगर इशू ये नहीं है, इशू ये है कि नमाज ऑन द स्ट्रीट्स, इज इट शुड इट बी अलाउड ऑन अ रेगुलर बेसिस और नॉट, कि और कुछ इशू है अजीत?
नहीं, इसमें ये जो क्लिप आया ना, ये छोटा सा क्लिप है, ये कटा हुआ
अच्छा
है।
अच्छा तो दूसरा क्या क्लिप है?
दूसरा क्लिप मैं बताता हूँ ना, यही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने भी, जब तक दूसरी और तीसरी क्लिप्स आई हैं इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की, तब तक दिल्ली पुलिस ने, मतलब होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाके अपने ही कलीग को बिना किसी जांच के, ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं हाँ ठीक है, प्राइम फेसी लग रहा है कि लात नहीं मारना चाहिए और हम जो है इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, नहीं, सीधा निलंबित कर दिया, सस्पेंड। फिर अगले दिन शुक्रवार को ये हुआ, 6 बजे तक सस्पेंड हो गया। डीसीपी जो है वो आकर के स्टेटमेंट दे दिया कि इनह्यूमन है फलाना डिपका, जो भी है हमने लोकल लोगों से बात की, मामला सुलझाया गया, फलाना ये सारा हो। अगले दिन क्या आता है वीडियो दूसरा, ये जो मनोज तोमर है SI, इसने सबसे पहले जब वो बिछाने लगे ना ये नमाज, और वो जो लोकेशन है उसके बारे में जानना चाहिए दर्शकों को, वही इंद्रलोक करके एक मेट्रो स्टेशन है, उसी के पास एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, और वहां 500 मीटर के क्षेत्र में गूगल पे जाओगे 6 मस्जिद है और है, और वहां मस्जिद की जो बाउंड्री है वो भी लैंड संभवतः PWD की है, उसके बाद बाउंड्री है ऐसे, उसके बगल में मेट्रो की तरफ जाती हुई चौड़ी सी 3 लेन की सड़क है। अब एक लेन पे इन्होंने पहले से पहले कार वार पार्क करके उसको घेरने की चेष्टा की, और वो इलाका भी जो है वो ट्रेडर्स का इलाका है, तो एक तरफ संभवतः वाल्मीकि समुदाय अधिक रहता है वहां पे, तो उनका एक अलग ट्रेडिंग का है, और इनका वही कबाड़ का और इस तरह का बिजनेस है मुसलमानों का, तो उसका एक एरिया अलग है। अब ये जो मस्जिद से सटी हुई सड़क की एक लेन जो है उसको एक कब्जा करने की निंजा तकनीक थी, पहले इन्होंने टेस्ट किया पार्किंग वार्किंग करके, और वहां अभी भी गाड़ी वाड़ी पार्क रहती है, जैसे कि दिल्ली में कई जगह पे होता है कि एक लेन जो है इनर मोस्ट दोनों साइड में वो पार्किंग में ही चला जाता है, लेकिन उसको टो करके लेके जाते हैं। वो किया, उसके बाद शुक्रवार को इन्होंने सोचा कि नमाज भी पढ़ी जाए। अब वो जब करने लगे ना, तब SI ने पहले बोला उन प्रोटोकॉल जो जो है ना सारा फॉलो हुआ है, पहले बोला कि भाई मत पढ़ो, वो नहीं माने, फिर उसने दरी उठानी आरंभ की, हटाने लगा दरी की, हटाओ, नहीं माने, वो बिछा के फिर पढ़ने लगे, उसके बाद उसने पुश किया कि तुम यहां नहीं पढ़ सकते, नहीं माने, पुश करने के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोकने की चेष्टा की, और फिर बिछा के पढ़ते रहे, फिर भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी होती है, फिर उधर जाम लगना चालू हो जाता है, और उसके बाद ये लास्ट रिसोर्ट था उसका, वो अकेला बंदा था वहां पे दिल्ली पुलिस का। और यदि आप दिल्ली पुलिस के बारे में या भारत की किसी भी पुलिस के बारे में जानते हैं, ओवरवर्क्ड, लेस पेड, और आपको आपका डिपार्टमेंट जो है ना चेक करने से पहले सोचता भी नहीं, इतना स्ट्रेस लेकर के उस बंदे ने जो किया, हालांकि मैंने भी वो ट्वीट किया, मैंने भी कि ये गलत है, लात नहीं मारना चाहिए था, कुछ भी हो जाता, लात मारना जो एक्सट्रीम है तो, लेकिन लात क्यों मार रहा है, एक पुलिस वाले की व्यथा आप समझो, कि वो वहां पे प्रेम से समझाया, उधर जाम लग रहा है, सब कुछ करके थक गया, लेकिन वो उसको पुश भी कर रहे थे, एक वीडियो में देखा उसको ढकेल रहे थे उल्टा, तब जाके उसने ये स्टेप लिया, तो वो संभवतः उसके आत्मसम्मान पे बात आ गई कि यार मतलब मैं पुलिस वाला वर्दी पहन के आया हूं, और उसके बाद भी। तो ये दो वीडियो जब आए तब हमें पता चला कि वहां पे हुआ क्या था वस्तुतः। और ये जो नमाज पढ़ने में बोलते हैं ना, ये फर्जी के आर्गुमेंट की यार 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट का काम है अपने घर में पढ़ो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हारे ही बाप की नहीं है सड़क, बाकियों के भी बाप की है, उसका पहला अधिकार है सड़क पे चलने वालों का, जाम लगा रहे तुम उसके मौलिक अधिकार पे हमला कर रहे हो, तुम पुलिस पर्सनल को काम करने से रोक रहे हो अगर वो तुमको बोल रहा है, मस्जिद खाली है और तुम नमाज जो है सड़क पे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा ये टेम्पररी अतिक्रमण जो है ना वो करते, गांव तो इन्होंने बसा लिया हल्द्वानी जैसे जगहों पे, लेकिन इन जगहों पे ये चाहते हैं कि इनके रेहरी वाले, इनके लोग वहां पे दुकान लगे, टेम्पररी ठेला वेला लगा के बेचे, और इस कारण से ये किया जा रहा था कि ये अब हमारा इलाका हो गया, हमने यहाँ नमाज पढ़ दी है वक्त के, प्रॉपर्टी हो गई, तो इस तरह से ये पुश करना चाह रहे थे, तब जाके वो सारी चीजें घटित हुई।
तो फिर अगर ये था तो इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज आई? ये भी मैंने एक वीडियो देखा था, ये भी बड़ा ही, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये क्या हुआ था। ये भी एक वीडियो मैंने देखा था, तो तेलंगाना में शायद हुआ था।
तेलंगाना का एक मंदिर का है, ये देखो बता सकते हैं, लोग जानते हैं ये भी। हाँ
तो ये अभी ये किस्सा हुआ था अपेरेंटली कुछ दिन पहले। पुलिस हिंदू डेवोटीज और औरतों को, जैसे आपने वीडियो में देखा था, कोमुरवेली स्वामी टेम्पल तेलंगाना में महाशिवरात्रि के ओकेजन पे उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। अभी मेरी सबसे बड़ी समस्या, मैंने क्यों ये भी दिखाया वो भी दिखाया, इसका कारण ये है कि पुलिस का ये बिहेवियरल पैटर्न भारत में ये है प्रॉब्लमेटिक। क्यों मैं कहता हूँ मालूम है? रेडी वाले, अभी मैं आपको है ना मेरे घर के बाहर की कहानी बताता हूँ। घर के बाहर हर रोज का ये तमाशा है। वो बेचारा गरीब आदमी फल बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, वो रोज है ना एक टाइम होता है सडनली वो भागना शुरू कर देता है। और वो क्या करता है, वो जो थोड़ा कॉर्नर ऑफ द रोड पे होता है वो भाग के ना इंटरनल रोड पे भाग जाता है। क्यों? अरे पुलिस वाला आएगा, मेरे को मारेगा और मेरा सामान फेंक देगा। ये एक एटीट्यूड है अजीत, जो हमारे देश में, ये सिर्फ ये नमाज से रिलेटेड नहीं है, ये एक पुलिस के अंदर एक ये एक एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट है, जो जहां पे वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं वहां पे वो कर देते हैं। ये आई थिंक, और ये वो हिंदू भी विक्टिम होगा, मुस्लिम भी विक्टिम होगा, सब कोई भी विक्टिम हो सकता है इसका। तो ये इशू के ऊपर क्या करें हम लोग? ये जो पुलिस की है, जो ब्रुटैलिटी होती है, ये ऐसी सस्ती ब्रुटैलिटी।
नहीं, वो उसमें फिर उसके कई एस्पेक्ट है ना, आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो, कहाँ की पुलिस ब्रूटल नहीं है। हम यूएस से कंपेयर कर रहे हैं, यूके से कर रहे हैं, यूरोपियन सिटीज से
यूएस
कर
में
रहे
तो
हैं,
डिश्काउंट डिश्काउंट कर देते हैं, वो अलग होता है।
वही बोल रहे हैं ना कि हम कहाँ से उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं। और आप क्या मतलब, आर दे पेड एट पार विद देयर
They're not.
यूरोपियन और अमेरिकन काउंटर
No, they're not.
पार्ट्स, आर दे
Cops are
ट्रेंड,
overworked and underpaid.
हाँ साइकोलॉजिकली क्या उनको ट्रेन किया जाता है इन सब सिचुएशन
नहीं,
को, कितने घंटे की इनकी शिफ्ट होती है। कॉन्स्टेबलरी या फोर्स जो है, जो यूएन का नॉर्म है, 222 पुलिस ऑफिसर पर 100,000 या ऐसे करके कुछ है उसका, भारत में 144 है, मतलब लगभग आधे पे काम कर रहा है। और 144 उपलब्ध है, वैकेंसीज और भी रिक्त तो पड़ी हुई है। दिल्ली में जो है संभवतः आधा जो है, आधा या 25% इतना ही काम कर रहे हैं लोग, इस तरह का है। तो वो सारा आप जब कपल करोगे ना, और आप यार मतलब पेमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और स्टार्ट से जो घूस लेने की परंपरा चली हुई है ना, और आपके भी ऊपर, ऐसा नहीं है कि अब मेरे दोस्त हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, आप ईमानदार हो ना तो आपको अशोक खेमका की तरह प्रताड़ित किया जाएगा। आप एक ग्रुप में, मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं कि मेरा कोई मित्र कस्टम्स में या फिर कोई एयरपोर्ट पे वो है, वहां पे बंधा हुआ है कि कंपनी इतना पैसा आपको देगी और सबके लिफाफे आपके ड्रॉअर में डाल दिए जाएंगे। अगर आप रिफ्यूज करते हो ना तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका डिपार्टमेंट आपको बोल देगा कि भाई ज्यादा हीरो मत बनो। ये है, तो वो जो घूसखोरी ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई। और जब आपका बॉस जो है टारगेट्स देने लगे पुलिस वाले को कि भाई इस नाके से तो मेरे को दिन का इतना, वो था ना क्या नाम था उसका, अंबानी के घर के आगे जो स्कॉर्पियो लगा दिया था, ये उद्धव ठाकरे की सरकार में, याद है ना एक केस आया था।
परमवीर सिंह, परमवीर सिंह।
हाँ, उसने 100 करोड़ की उगाही जो है उस वक्त होती थी, 100 करोड़ पर मंथ टारगेट दिया हुआ था गृह मंत्री की तरफ से,
उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला था।
है ना, नवाब या कौन था वो, अभी संभवतः वो जेल में है। तो इस तरह के बर्डन के साथ जो है, वो सबसे ज्यादा फील वही करता है जिसके हाथ में लाठी है, गन भी नहीं लाठी है जिसके हाथ, वही लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो पैसे इकट्ठा करता है। उस पे है कि तो वो घूस लेगा ही, वो मारेगा ही रेहड़ी वालों को। रेहड़ी वालों को लेके रूल्स आ गए कि ये जो इनफॉर्मल ट्रेडर्स हैं ऐसे, उनके लिए सरकार ने रूल भी बनाए, दे कैन गो एंड रजिस्टर देमसेल्फ। श्रमिकों को लेकर के बीमा की योजना है, नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं ना, जो हम और आपको पता भी नहीं है किन किन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं बनी हुई है, वो भी चल रहा है। बट वही है कि क्या वो रेहड़ी वाला जानता है अपने अधिकार कि वो लगा सकता है कि नहीं। एमसीडी से लाइसेंस लिया हुआ है फिर भी उसको जो है देना पड़ता है कि 100 रुपया पर डे दो। यार हमारे यहाँ शनि बाजार और ये रवि बाजार, ये सब सड़क के किनारे लगता है वीकली मार्केट, उसमें भी हर सब्जी वाले से पुलिस वाला वसूलता है पैसा। ये हर जगह का है। तो इसके आपको दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। एक गरीब प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन वो भी वो दूसरे तरफ का तरह का गरीब है जिसके ऊपर अलग तरह के बर्डन है। लेकिन हाँ, हमने इसके एक्सट्रीम्स भी देखे हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के। मैं जिस जगह से आता हूँ बेगूसराय, और मेरा ननिहाल जिस जिले में है, वहां का एक लड़का अनुराग पोद्दार था, उसके माथे में गोली मारी, मस्तक खुल गया और उसका मगज जो है दिमाग ब्रेन वो सड़क पे गिरा हुआ था दुर्गा पूजा विसर्जन के समय में। लिपि सिंह एसपी थी, उसने मतलब लाठी चार्ज का भी नहीं दिया, सीधे गोली मारने के आदेश दिए और गोली पुलिस ने मारी। कांवरियों पे क्या मतलब लाठी चार्ज नहीं होता है, हर जगह होता है यार। पुलिस हर जगह भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह के मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करती है, रिटर्न हो या अनरिटर्न, वो इसी तरह के। क्योंकि वही है कि आप कभी भी, और खास करके मुसलमानों केस में, नो नंबर ऑफ पुलिस इज एनफ। वो जब घेरते हैं ना, वही मैंने बोला कि आपने एक ही वीडियो देखा, एक वीडियो और आया, उस वीडियो में प्रॉपर लिंचिंग हो रही थी उसकी, उस एसआई की, और बाकी दिल्ली पुलिस के 6-7 लोग थे। और नकारी और निकृष्ट मतलब एक हैंडल है वो डीसीपी नॉर्थ का, दिल्ली पुलिस का, वो बोल रहा है कि ये मिसलीडिंग है ये वीडियो। किसी ने लिख दिया कि वो मनोज तोमर ही है उसमें, बोला कि वो मनोज तोमर नहीं है, वो जो है शुक्रवार की भी घटना नहीं, वो शनिवार को हुई है, और एक्चुअल में लिंचिंग नहीं हो रही है, वो पुलिस वाले को एस्कॉर्ट करके ले जा। 1,000-2,000 मुसलमानों की भीड़, प्रॉपर गाली की आवाजें आ रही हैं, मारने पीटने वो दिख रहा है, और उसको दिल्ली पुलिस स्वयं कर रही है कि नहीं ये एस्कॉर्ट किया जाए। साले दामाद है तुम्हारे, दामाद है जो एस्कॉर्ट करके ससुराल उसको छोड़ने कहाँ ले जा रहे। तो जब पुलिस स्वयं इस तरह के मतलब मैसेजिंग अगर करेगी, तो आप सोचिए कि जो एसआई लेवल का या कांस्टेबल लेवल का है उसका मनोबल कितना गिरेगा। तो इसके कई एस्पेक्ट हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ऑल सेड, पुलिस रिफॉर्म्स मतलब सबसे अधिक नेसेसरी है, तो उस दिशा में अभी कदम तो ले ही लिए गए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता और जो एविडेंसेज एक्ट, उसको ये तीन जो आए थे, उसको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले कानून, वो एक कदम लिया गया उस ओर। मुझे लगता है कि इस टर्म में अमित शाह या नरेंद्र मोदी जो भी गृह मंत्री बनेंगे, उनकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि हम पुलिसिंग को जो है थोड़ा व्यवस्थित करें। अब इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो भाई वो पैसा दो ना किसी को, पुलिस वालों की संख्या बढ़ाओ, उनको ट्रेन करो कि वो ढंग के हो, नए जनरेशन के जो लोग पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको ह्यूमेन बनाओ। ऐसे मॉडल हैं अपने ही देश के, कई जिलों में पुलिस को बहुत लाइक किया जाता है, तो उनको जो है केस स्टडी के तौर पे दिखाओ और बनाओ बढ़िया पुलिस फोर्स।
8 पुलिस रिफॉर्म कमिटीज बन के रिकमेंडेशंस दे चुकी हैं भारत में, 8। लास्ट 3 अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। कम से कम 2 पुलिस कमिश्नर्स के साथ मैं इस पॉडकास्ट पे बात कर चुका हूँ। लास्ट मैंने बात की थी ओपी सिंह के साथ, जब मैंने उनको कहा था, और मैं कहता हूँ पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है, स्पेशली पैरामिलिट्री फोर्सेस में सुसाइड रेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। बॉर्डर बॉर्डर के जो फोर्सेस होती हैं, पुलिस में भी बहुत हाई रेट्स है सुसाइड के, इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। इनफैक्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुकाराम मुंबले का था, जब 26/11 हुई थी, कि वो बेचारे डंडा लेके भाग रहे हैं और वो लोग के पास, टेररिस्टों के पास
AK-47
AK-47 थी। हैविंग सेड दैट, पुलिस ब्रुटैलिटी का कोई कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, और या ये भारत में हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वन वन लीड्स टू द अदर। मगर हैविंग सेड दैट, ये जो नमाज ऑन द स्ट्रीट्स है ना, मेरे को इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि भारत में, अगेन मैं पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहा हूँ इसके लिए, और ये मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ना अजीत इतिहास निकाल रहा था पॉलिटिकल जजमेंट्स, कोर्ट की जजमेंट्स का, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि आप सर्टन चीजें नहीं कर सकते हो, जैसे रात को आप जोर जोर से अपनी रिलीजियस स्थल, वेदर नमाज और टेम्पल, उधर से आप नहीं बोंगिया मार सकते, आपको बोंगिया मारना नहीं दिया जाएगा। ये कानून महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी डाला हुआ है, ये कानून दिल्ली में भी है, ये कानून भारत के ऑलमोस्ट हर स्टेट में है कि रात को नहीं होगा। दूसरा, आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। मुझे ये नमाज ऑन द रोड्स और ये रिलीजियस प्रोसेशंस ब्लॉकिंग थिंग्स सबसे ज्यादा बॉदर क्यों करती है, मैंने 2 साल भिवंडी में फैक्ट्री चलाई हुई है, मुझे मालूम है हर फ्राइडे को उधर क्या होता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अजीत, मैं रास्ते में जाता था, एवरी टाइम वो हाईवे खाली होती थी, फ्राइडे को है ना एक साइड ऑफ द रोड बंद हो जाती है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट, और मैं पुलिस वाले को बोलता रहा, भाई ये क्यों हो रहा है। बाय द वे, उस स्पॉट पे आज नहीं होती है क्योंकि सडनली वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेंज हो गया, और जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने पुलिस वाले को बोला नॉट अलाउड क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लगता है। तो एक मैंने इसमें, पता नहीं आपका क्या व्यू है, मैंने इसमें एक चीज क्या नोट की है नमाज में, आई थिंक इट इज अ टैक्टिव ऑफ इंटिमिडेशन। मुझे हमेशा ये बड़ा ही इंटिमिडेटिंग लगता है कि हाँ हम है क्या उखाड़ लोगे, काइंड ऑफ अ थिंग। ये शक्ति प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, शक्ति प्रदर्शन कहेंगे। और मेरे को, आप प्रे करो ना 500 बार प्रे करो दिन में, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई समझ। इनफैक्ट मैं मुहर्रम के प्रोसेशंस के बारे में लोग व्यूज देते हैं, मैंने बोला नहीं भाई, गणेशोत्सव निकल सकता है तो मुहर्रम का प्रोसेशन भी अलाउ होना चाहिए, सरदारों का भी निकलता है तो मुहर्रम का भी अलाउ होना चाहिए, और मुसलमानों का ईद का प्रोसेशन भी अलाउ होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आपको शायद पाकिस्तान जाना चाहिए, मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूँ। मगर मेरा पॉइंट वो नहीं है, मगर ये जो रोज का है रास्ता रोकना, यार ये तो एक यूनिक प्रॉब्लम है, और कौन करता है मेरे को बताओ।
नहीं, नमाज वाला जो इशू है ना, इसको कंपेयर करते हैं कि यार कांवर यात्रा होती है तो आप तो उसकी पूजा करते हैं। कांवर के साथ यात्रा शब्द जुड़ा हुआ है, वो मूव करता है हमेशा, वो एक जगह पे खड़े होके जाम नहीं करता है। और यदि जाम करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। उसी तरह जितने प्रोसेशंस आपने बोले सब मूविंग प्रोसेशंस होते हैं, ईद का हो, विसर्जन हो, जो भी है, और वो साल में एक एक बार आता है। ये जो तुम करते हो ये तुम मस्जिद में कर सकते हो। विसर्जन जो है, जहां पे दुर्गा जी की मूर्ति बनी वहीं विसर्जन नहीं होता, वो कहीं जलाशय होगा वहीं पे जाकर के विसर्जन हो सकता है, चाहे समुद्र हो, नदी हो, तालाब। ताजिया जो है वो निकलेगा ही, रास्तों से होते हुए ही जाता है। ईद का भी होगा तो वैसे ही जाएगा। लेकिन जो तुम नमाज की बात कर रहे हो ना फ्राइडे को, वो मस्जिद में 2-3 शिफ्ट में हो सकता है, यदि बोलोगे कि जगह कम पड़ रही है।
नहीं, वक्फ लैंड इतना सारा है, वो देते क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड?
नहीं, तुम अपने घर में पढ़ो ना यार, किसने बोला है कि एक ही टाइम पे सारे लोग आएंगे। ये सिंपल सा है कि हर इलाके की जो मस्जिद है उसको पता है नंबर्स कितने हैं, कितने लोग आते हैं। आप ब्लॉक बाय ब्लॉक बता दो ना, इतने लोग जो है 2:05 पे आए, इतने लोग 2:15 पे आए, ऐसे कर लो। तुम ये कैसे मानते हो सड़क तुम्हारे बाप की हो जाती है और तुम जाम लगा दोगे और पुलिस तुमको प्रोटेक्ट करेगा। और एक इनका लचर आर्गुमेंट आता है कि नहीं, हम तो ये यार नमाज तो 5 मिनट का काम, 5 मिनट का काम नहीं, 1 घंटे का काम होता है। 5 लाउंडे आएंगे सबसे पहले टोपी पहन के, और एक लेन घेरना आरंभ करेंगे, और वो खुद पुलिस रहे ना रहे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चालू करते हैं कि आप लोग उधर से आइए, उधर से आइए, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी। वो आरंभ होता है, फिर बाकी लोग आते हैं, दरी बिछाई जाएगी, उसके बाद बैठेंगे, इधर उधर देंगे, माहौल बनता है, उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद फिर गप करेंगे। वो रुके रहते हैं वहां पे, तब तक ट्रैफिक जो है एक अलग शेप ले चुका होता है, उस लेन को अवॉइड करके जा रहे हो। और वो एक लेन की बात नहीं, तो लगभग 1.5 लेन 3 लेन की सड़क जो है, फिर एक ही लेन फंक्शनल होती है, क्योंकि आपने गलती से उसको टच कर दिया, दंगे हो जाएंगे कि तुमने नमाजी को टच कर दिया। ये वाला जो है, तो ये सारा, ये 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का पूरा ये काम होता है, ये 5 मिनट का काम नहीं होता है। और कोई भी बाकी कोई भी प्रोसेशन होता है वो रुकता नहीं है कहीं पे। ये बोल देते कि नहीं, सड़क पे जो है माता का जगराता कर रहे हो, सोसाइटी के सड़क पे यदि हो रहा है तो 20 मीटर के बाद दूसरी सड़क है, लेकिन तुम जब हाईवे पे करते हो ना, और उस सोसाइटी में एक ही धर्म के लोग मूलतः रहते हैं, तो सोसाइटी में तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप 2 मिनट आपको लगेगा, फिर भी मैं उसके विरोध में ही कि आप कम्युनिटी हॉल में कीजिए, उसके लिए डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए। लेकिन तुम जो मेन हाईवे को इस तरह से जाम कर दो, कहीं पे भी रैंडम जगह पे, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पढ़े वो भी होता है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे उसको सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बोला जाता है, ट्रैफिक रोक के, और एक बच्चा जो है नमाज पढ़ रहा है, ये भी हमने देखा है, और उसको मतलब दाद दी जाती है, अरे क्या ट्रैफिक वाले ने गजब की बात की, उसको सड़क पे ही नमाज पढ़नी, जबकि उसके हदीस में लिखा हुआ है कि सड़क पे पढ़ी हुई नमाज का कोई मतलब नहीं। अजान भी लाउड स्पीकर पे देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं, मुसलमान राष्ट्रों में प्रतिबंधित है, वहां आप ये सब नहीं कर सकते। भारत में केवल वही है ना कि जब ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज होती हैं, और वो जो मुल्ला आपको जैसे बताएगा, तो फिर आपकी मजहबी मान्यताएं भी अलग हो जाती, वो आपको लीव मिल जाता है कि नहीं यार, हम तो गजवाए हिंद के रास्ते में, हम उसके लिए कर रहे हैं, तो ये नमाज स्वीकार्य हो या ना हो, हमें ये करते रहना, भगवान जो है वो मतलब भगवान सॉरी
हाँ,
अल्लाह जो है वो स्वीकार कर लेगा,
जस्ट
तो
टू बैक
ये उस
यू,
तरह से मोटिवेटेड होता है।
ये
हाँ
टू
तो
एंडोलॉजी
यही
ने भी
बोलिए।
ये हदीत शेयर की थी, ये जामिया तिर्मिधी द बुक ऑफ सलात प्रेयर, इब्न उमर नरेटेड द प्रॉफिट प्रोहिबिटेड सलात फ्रॉम बीइंग परफॉर्मड इन 7 places, द डंग हीप, द स्लॉटरिंग एरिया, द ग्रेवयार्ड, द कॉमनली यूज रोड, द वॉश एरिया इन दैट एरिया दैट कैमल्स रेस्ट एट एंड अबव द हाउस ऑफ अल्लाह द काबा, दिस ग्रेड इज ऑल्सो हसन दरुसलाम, सो दिस ग्रेड इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल ग्रेड एज फार एज हदीस आर कंसर्न, सो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि इसको रिलीजियस सैंक्शन है, इट इज अ प्योर एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, इट इज जस्ट अ लोड ऑफ रबिश, एंड लोगों को जिसको जो कहना है, और देर आर अदर ऑल्सो, देर आर अदर हदीस ऑल्सो, अगर लोगों को लगेगा कि नहीं सिर्फ ये एक ही है, ये एक और हदीस ले लो भाई, ये वाली भी है, द बुक ऑन मॉस एंड कॉन्ग्रीगेशन चैप्टर प्लेसेस वेयर इट इज डिसलाइक टू परफॉर्म प्रेयर, सुनन इब्न मजा 746, इट वॉज नरेटेड दैट इब्न उमर सेड अल्लाह मैसेंजर प्रोहिबिटेड प्रेयर फ्रॉम बींग परफॉर्म्ड इन 7 places, ये सेम चीज का मैं दूसरा वर्जन बता रहा हूँ लोगों को, कि लोगों को लगेगा कि दिस हैज रिलीजियस सैंक्शन, इट एक्चुअली डज नॉट हैव रिलीजियस सैंक्शन, और वो छोड़ दो, मैं रिलीजियस पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, मैं आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस एनीवेज, बट द
नहीं
पॉइंट इज
नहीं
दैट
रिलीजियस सैंक्शन भी रहेगा तो तुम क्या वो परफॉर्म करोगे? मतलब कुरान में कह रहा है काफिरों को काट दो, तुम घात लगा के बैठे तो मार दोगे, हम कुछ नहीं बोले उस पे। तो तुम्हारा रिलीजियस सैंक्शन है भी तो हम एक जो दूसरे रिलीजन के हम बाध्य नहीं है उसको झेलने के लिए, वो तुम अपने तक रखो। तुम्हें कह रहा है कि काफिरों की हत्या करना जायज है, उनकी बहू बेटियों का रेप करना, बकरी का रेप तक जायज ठहराया गया है, और इसके मौलवी आके करते हैं, तो भाई वो तुम्हारे में है, तुम अपने घर की बकरी के साथ करो, हमारी बकरी के साथ गाय के साथ करोगे तो फिर उसके लिए अलग कानून बने हुए। उसी तरह तुम्हें घेरना है अपने इलाके की सड़क, अपने घर की छत, इसको घेरो, किसी कोई दिक्कत नहीं। यही लोग कहते हैं ना रिलीजन इज ए वेरी प्राइवेट थिंग, साले सड़क कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है? सड़क तो सार्वजनिक है, वहां पे क्यों करने आते हो फिर?
और ये लोग बोलेंगे ना कि इसका ग्रेड सही नहीं है, हसान है तो उसको मान नहीं सकते, यार देखो मेरे को कोई मेरे को तुम्हारी ये घटिया आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट योर रिलीजन एंड योर रिलीजियस फीलिंग्स, नहीं तो जब मेरे को एक बात बताओ, मैं एज अ डिसबिलीवर क्या मैं प्लेकार्ड्स लेके हर टाइम जब कोई रिलीजियस प्रोसेशन जा रहा है स्पेशली नमाज वाला, मैं उधर खड़ा रह सकता हूँ, बोल सकता हूँ गॉड सक्स, और जोर जोर से मैं चिल्लाना शुरू करूं जैसे ही प्रेयर शुरू होगी, मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, क्या बकवास चालू है, अब एथीस को अलाउ करोगे? नहीं यार, उनका हफ्ते में ना एक दिन है, द गॉड सक्स डे, वन डे ऑफ द वीक आई जस्ट वॉन्ट टू येल गॉड सक्स, विल यू अलाउ मी टू डू दैट, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? अरे यार एथीस लोग हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती है, समझ जाना यार, 15 मिनट के लिए गॉड सक्स बोलना है उसको, रास्ते में जाके चिल्लाना है, अलाउ करोगे मेरे को? व्हाट नॉनसेंस यार, एंड आई डोंट थिंक गॉड सक्स, because I don't believe in it, so I can't think it sucks. Just to clarify before somebody gets triggered, I don't think that the things I don't believe in suck or not suck. But the point is, what if I do that? What will happen to me? That's what I'm trying to say. ये बहुत frustrate करती है मेरे को ये चीज़, और especially क्योंकि मेरा हमेशा भिवंटी का Friday का दिन ख़राब होता था इसके लिए. मेरे को ये बहुत इरिटेट करती है कि मतलब क्या है यार आप लोगों को क्यों, मतलब मेरा ऑनेस्ट इसका सोल्यूशन है, इट इज अ सप्लाई साइड इशू, इट इज अ सप्लाई साइड इशू एंड इट शुड बी डेल्ट विद. यार आप क्यों कर रहे हो, ऑलरेडी इतना घटिया माइंड नमिंगली फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक है इंडिया में, इतना घटिया ट्रैफिक है हमारे देशों में, साला उसको तुम और टॉर्चर को ऐड करते हो, क्यों करते हो यार. और मैं ये नहीं कह रहा, अगर कोई भी रिलीजियस ग्रुप करेगा ना ये, मेरा आंसर एक ही होगा, गेट द हेल ऑफ माय रोड मैन, डोंट ब्लॉक माय रोड. अरे रोड गाड़ी चलाने के लिए बनाई थी यार, तुम क्या तुम लोग ने क्या क्या
इस पे, ये भी देखो ना, हाइजीन का इशू ले लो यार, सड़क पे नमाज, सड़क पे किस किस तरह के टायर जाते हैं, किसी टायर में टट्टी लगी होगी, सुअर की टट्टी लगी होगी, अधिकतर टायर पे कुत्ते का मूत्र होता है, वो उसको टच करते हो जा रहा है, तुम वहां पे यार ये सब करना चाहते हो, कोई रीजन होगा ना, कि तुम्हारे ही प्रोफेट ने बोला है जो हदीसों में लिखा हुआ, कोई तो कारण होगा. डंप यार्ड में बोल रहे नहीं, जहां पे गार्बेज है कचरा पे वहां पे नहीं करना है. सड़क पे खाली आवाजाही के लिए नहीं बोला होगा, सड़क पे लोग अपने किस तरह के पांव कहां से लेकर के आ रहे हैं, वहां घिस रहे हैं, तो वो पवित्र भी जगह नहीं है, तो उस हिसाब से भी. लेकिन बात फिर वही है कि जिहाद की राह, जब मतलब फाइनल डेस्टिनेशन आपका कुछ और हो, तो फिर ये तो छोटे छोटे पवित्र अपवित्र का ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो परे हट जाता है, फिर वो कोई मतलब नहीं. आपको दिखाना है कि हम कर सकते हैं, तुम कर क्या लोगे, तो उस कारण से ये किया जाता, और इसका तीसरा कोई कारण नहीं.
एनीवेज क्या करे, चलो अभी थोड़े प्रश्न लेते हैं. ओके, एक किसी ने मेरे लिए शायद पूछा, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एन एथीस्ट, आई नो पीपल कैन बी बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली एंड देन हैव बिकम एथीस्ट, बट हाउ वुड यू फिल्टर देम दैट वे एवरीवन कैन से. देखो ये जो फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई हिंदू ऑल्सो बियॉन्ड अ पॉइंट होएगा ना, तो ये तो कोई फेयर क्वेश्चन नहीं हुआ कि आप एथीस्ट को कैसे पता कर लोगे. मतलब इनफैक्ट इट इज इजियर टू फाइंड एन एथीस्ट, यू जस्ट हैव टू सी देयर पोस्ट, द यूजुअली काइंड ऑफ इंडिकेट दे डोंट लाइक रिलीजन, इट्स फार इजियर टू फाइंड एन एथीस्ट. बट एनीवेज अच्छा इस पर क्या विचार है आपका, पाकिस्तान शुड ऑल्सो ब्रिंग अ सीए सो दैट पीपल लाइक राणा यू बरफक हु आर बीइंग परसिक्यूटेड कैन गो ओवर देयर.
हां ये तो ये मीम चल रहा था और ये बहुत बहुत सही है, और एक तो शाहबाज शरीफ का ट्वीट को भी एडिट करके वो डाला हुआ था कि हमने भारत के रिटेलिएशन में एक अपना सीए लाया और भारत के जितने मुसलमान हैं दे आर वेलकम इनटू पाकिस्तान. तो ठीक है, वही है ना कि जब इनको बोलो कि यार तुम पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है तुम उसके साइड चले जाते हो, जब हम देखते हैं पटाखे फूटते हैं तुम उसको सेलिब्रेट करते हो, और हम कहते हैं कि तुम साले पाकिस्तानी हो तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो, तब कहते हैं कि नहीं हम भारतीय हैं हमें जो है पाकिस्तानी बोला जाता है, तो फिर तुम पाकिस्तानियों के लिए तुम्हारी छाती में दूध क्यों उतर आता है कि नहीं नहीं मुसलमानों को वहां से क्यों नहीं ला रहे, तुमको पाकिस्तान से क्यों इतना प्रेम है भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो ये उनको स्वयं से पूछना चाहिए, उनको उत्तर मिल जाए. और बिल्कुल हाँ, जिन जिन को लग रहा है कि फांसी बाद आ गया तो जाओ ना निकलो, और हम लोग तो साला क्राउड फंडिंग के लिए बैठे हुए हैं. मैं अकेला 150 लोगों को टिकट देके स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं अकेला अपने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, निकले तो सही है लोग.
ओके, हाउ डू वी काउंटर एंटी सीए आर्ग्यूमेंट्स इन द वेस्ट, किसी ने पूछा आपको
कि क्यों जरूरी है काउंटर करने का, ये लोग फॉरेन मीडिया में जो लिखते हैं कोई नहीं पढ़ता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. ये वही कुशल और अभिजीत और सैम शर्मा टाइप के इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते हैं सब, हमारे जैसे लोग जो है ये सब नहीं पढ़ते हैं, ये वेस्ट वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या लिखा है भाई, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. ये ट्विटर का जो टॉप मतलब ऊपर का लेयर है ना, वही लोग पढ़ के उसी पे इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन इनकी होती है, उसके बियॉन्ड उसका कोई कहीं पे इफेक्ट नहीं. अगर होता तो भारत की विदेश नीति इतनी सुदृढ़ नहीं होती, इतने समझौते इंडिया, मतलब क्या है उनका पर्पस, क्या है सोरोस का या इन लोगों का क्या पर्पस है कि इंडिया में इंडिया की इकोनॉमी को तबाह कर दो और इंटरनल स्ट्राइप्स क्रिएट करो। क्या इन दोनों में पिछले 10 वर्षों से ये सफल हो रहे? नहीं हो रहे। भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यूक्रेन वार में भी, गाजा में, दोनों में दिखा दी। यूएस से अभी भी समझौते उसी तरह से चल रहे हैं। ईयू से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभवतः साइन हुआ है कुछ ही दिन पहले। तो हम पॉजिटिवली हर एस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं उनके साथ डील करने। तो ये कुछ मीडिया, उसके लोग कुछ इधर उधर लिख रहे हैं, तो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट इट। वो वही है कि उनकी बात कोई नहीं पढ़ता यार। वो आपस में पढ़ के प्रसन्न हो जाते, करे तुमने लिख दिया मैंने भी लिख दिया, गजब, दोनों अपना जाम में जाम टकराए, दारू पी रहे। उससे इधर मुझे उसका कोई इम्पैक्ट कभी नहीं दिखा। अगर होता तो अभी मोदी सत्ता में नहीं होता और 400 पार की बातें भी नहीं कर रहा होता।
आई थिंक क्या होता है उनमें कि मेरे केस में एक बहुत बड़ा तबका आउटसाइड इंडिया मुझे सुनता है, तो उनको उनको उनके शायद वर्क प्लेस पे और बहुत सारी जगहों पे कैजुअल डिस्कशंस में उनके दोस्त ये सब प्रश्न पूछते हैं, तो उसका सिंपल आंसर दिलीप भाई वुड बी दिस, उसके लिए आप लॉ को एक्सप्लेन करो, लॉ 2 पेज का है उसको पढ़ लो और बोलो ये लॉ में प्रॉब्लम क्या है, और फिर उनको आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ, और जैसे मैंने आपको बोला था कि अहमदी का क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि भाई द मोमेंट वी एक्सेप्ट दैट, वी एक्सेप्ट द पाकिस्तानी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, फॉर अस दे आर मुस्लिम्स एंड दिस लॉ इज फॉर नॉन मुस्लिम्स, इट एंड्स देयर, खत्म हो गई बात।
दूसरा इसमें जो आपने बोला ना, कैसे काउंट, तुलसी गबार्ड ने कैसे काउंटर किया था 2002 के इशू को? वो जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन या कुछ इसी तरह से उसका चल रहा था, जो बाइडन वाला जो उस वक्त है, उसने सीधा बोला, उससे किसी ने पूछा कि आप क्या सपोर्ट करती हैं मोदी को और इंडिया के इन पॉलिसीज को, और उसने 2002 में दंगे करवाए। तुलसी गबार्ड ने पूछा कि तुम्हें पता है कि 2002 में जो हुआ उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? डू यू नो दैट 59 पीपल वेयर, मतलब ये आर्सन कर दिया गया, डब्बे में आग लगा दिया गया, तुम्हें पता भी है, और उसमें बच्चे भी थे 14-15। वो चुप हो गया। तो आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे ना, तो यू कैन काउंटर देम वेरी इफेक्टिवली। यू डोंट नीड टू नो द नुएंसेज एंड डिटेल्स ऑफ इट, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे पता चल जाता है।
ये और क्या था, ये तो किसी ने बोला है कि सीए कैन बी पब्लिसाइज्ड इन लिबरल लीगो बाय कॉलिंग इट एस्केप एक्सपेडाइटेड सपोर्ट फॉर कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय पर्सिक्यूशन एंड एक्सट्रीमिज्म और स्पीडी एक्सेस फॉर विक्टिम्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड नेशनलिस्ट ग्रुप्स, कर सकते हो यार, मगर जिसको आपसे खोट निकालना है वो आपके कोर्ट निकालने ही वाला है, आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी मेंटल जिम्नास्टिक्स कर लोगे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका कोई इलाज नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीए इज राइट बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक असम वेयर डेमोग्राफी इज द मेन, अभी असम की हमने विडंबना देखो, जो लोग सीए को अपोज करते हैं वो एक साइड से है, जो एनआरसी को अपोज करते हैं वो हमारी साइड के लोग हैं, सो कॉल्ड हमारी साइड के लोग, आसाम में तो एक अलग ही लेवल का, जिसको क्लस्टर फक बोलते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का है। मगर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, नेशन वाइड सीए को एनआरसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, दिस इज जस्ट अ सीए नोटिफिकेशन, दिस इज नॉट एन एनआरसी नोटिफिकेशन, एंड ऑनेस्टली मेरे हिसाब से एनआरसी इज नॉट फीजेबल ऑल्सो कंसिडरिंग द लिमिटेड स्टेट कैपेसिटी वी हैव, बट ये आसाम का क्या है आपके हिसाब से, क्या है आपका क्या
नहीं
विचार है?
नहीं आप एनआरसी होनी चाहिए, फिजिबल है। पहले तो ये जो ये कारण तमिलनाडु में लागू नहीं होने दें, बंगाल में, भाई सीए तुम्हारे लिए है ही नहीं। सिटीजनशिप जो स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट का है ही नहीं। तो ये लोग बस अपनी जनता कर रहे कि हमने विरोध किया। तुम यार सिटीजनशिप तो दे ही नहीं सकते। जो एनआरसी की यदि बात की है नॉर्थ ईस्ट में, तो जो वहां का इंडिजिनस पॉपुलेशन है जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, वो स्वयं कह रहे हैं कि माइग्रेंट्स को यहाँ से निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली उन जगहों पे वो जो बाहरी लोग आए हैं उन्हीं के स्पेस में इंक्रोच कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए जो पॉलिसीज बनी हुई है अल्पसंख्यकों के लिए, वही तो बट रहा है ना उनमें। तो दे फील द पिंच ऑफ इट, और वो जानते हैं कि ये डेमोग्राफिक चेंजेज आने से वो जितने रेवड़ियां खाया करते थे उसमें कमी आ जाएगी। तो इस कारण से, और नॉर्थ ईस्ट में आएगा एनआरसी, तो चल रहा है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी जो है उन्होंने रिकमेंड कर दिया, और वहां पे मुझे लगता है कि 100 ट्राइब्यूनल या इस तरह से, मतलब ट्राइब्यूनल नहीं, संभवतः 100 ऑफिसेज या इस तरह खुले हुए हैं जहां पे आपको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी होगी और आप यहीं के नेशनल हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको, तो वो चल रहा है, वो सतत प्रोसेस चल रहा है। और वो CA एक बार हो जाए उसके बाद NRC उसके साथ साथ लागू होनी चाहिए। कम से कम हमारे पास डेटा होना चाहिए कितने लोग यहाँ के हैं, कितने लोग कहाँ से आए, और उनके लिए अलग पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए कि इसके साथ हमें क्या करना है, लौटाना है उनको या डिटेंशन सेंटर में रखना है, स्टेरलाइज करना है, क्या करना है करो।
अच्छा, मजे की बात है ना, लोग क्या लोग बोलते हैं कि वेस्ट देखो कितना सिविलाइज्ड है, वेस्ट ऐसे करता है वैसे करता है। लोगों को एक्चुअली वेस्ट की हिस्ट्री नहीं मालूम। अमेरिका में 1960s में जिम क्रो लॉस थे, बाय द वे, कोई जाके पढ़ लेना जिम क्रो लॉस क्या होते हैं। फिर जापानीज लोगों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया था अमेरिका में, नॉट इन इन अ नॉट सो रिसेंट पास्ट उनका। अमेरिका में इमिग्रेशन इज अ वेरी सीरियस इशू, जिसमें रिपब्लिकन स्टेट्स आर नॉट प्रो इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन को बोलते हैं ना कि वेस्ट कभी, मगर वेस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। एक्चुअली नहीं, वेस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। एवरी सिंगल इमिग्रेशन पॉलिसी बाय नेचर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेटिंग। द मोमेंट यू डिमांड एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मीन्स यू आर वेटिंग द पर्सन। द मोमेंट यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वेटिंग, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग सम रिक्वायरमेंट। वो वेटिंग के क्राइटेरिया अभी वेस्ट को कैनेडा नेबर मिला, खास तौर पे अमेरिका और मेक्सिको, उनके कोई हिस्टोरिकल वॉर नहीं है। आई मीन हाँ, अमेरिका बोल सकते, कैलिफोर्निया ले लिया उन्होंने मेक्सिको से, तो मगर उनके वो रिलेशन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान इज अ यूनिक हिस्ट्री यार। तू मतलब कैसे कैसे कोई ये हिस्ट्री को डिनाई कर सकता है? मेरे को ये है ना अनबिलीवेबल लगता है, लोग बोलते हैं कि मतलब हम पूरा हिस्ट्री को एकदम ही डिनाई कर दे। मगर एक चीज ये किसी ने बोली थी, हम हिंदू अपना पक्ष रखने में इतना नालायक क्यों है? इसने क्वेश्चन पूछा।
इस कारण से है कि मतलब लायक बनने के लिए जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो स्ट्रक्चर है नहीं हमारे यहाँ। कल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला था, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इंडिया करके, ट्विटर पे,
अच्छा, ये
और
ट्रेंड
वो
था।
ट्रेंड जो है वो छोटे छोटे हैंडल्स ने स्टार्ट किया, क्योंकि न्यूयॉर्क वाले और लंदन वाले लोग प्रीच करते रहते हैं ना कि भारत में भोजन खराब है, भारत में रहने नहीं आते। उन्होंने उनकी जो सड़क पे टट्टी करने की फोटो, मेट्रो में हगने की फोटो, मेट्रो में नंगे दौड़ने की फोटो, ये सब निकाल निकाल के उनके शहरों के, और ये व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया करके जो ट्रेंड कराया, उसने यह दिखा दिया कि हम स्कैटर्ड भी हैं, फिर भी जब हमें रिस्पॉन्ड करने का समय आता है तो वी कैन यूनाइट एंड एक कोहेसिव रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। हम अभी जो आपको लगता है कि बिखराव है, एक साथ नहीं देते, उसका यही कारण है। मोटिवेशन क्या है? किसी एक व्यक्ति या समूह के लिए एक साथ कार्य करने का। क्या आप उसको फंड कर रहे हैं? क्या आप सपोर्ट सिस्टम है किसी तरह का कि कोई पुलिस दूसरे राज्य की उठा ले जाएगी, आप क्या उसका सहायता करेंगे? नहीं करते हैं, तो इस कारण से वो स्कैटर्ड है, और वामपंथियों का इकोसिस्टम बनने में 150 साल लगा, जो अभी इतना वो एकदम वेल ऑइल्ड मशीन की तरह काम कर रहा है। दक्षिण पंथियों का या नॉन लेफ्ट का सिस्टम अभी बना ही नहीं, वो एकदम इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, तो अभी हम वहीं पे हैं। तो वो धीरे धीरे, नवजात शिशु भी अभी नहीं है, लिक्विड फॉर्म मतलब अभी सोचा जा रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसमें समय लगता है।
मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस पे ये है कि नॉन लेफ्ट वाले लोग पढ़ते नहीं है। तो अब मैं एकदम ओपन
हाँ
ऑनेस्ट एडमिशन कर रहा हूँ, वो पढ़ते नहीं
ये
है,
तो है,
पढ़ते नहीं है। उनको सिर्फ जिसको कहते हैं तली में आया गली में खाया, तुम मेरे को 60 सेकंड में बता दो सारी चीजों का सोल्यूशन। भाई 60 सेकंड में सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ आज की पॉडकास्ट की तैयारी करने के लिए जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे पता चला ये 2002, 2004, 2010, 2009 में भी ये सब हो चुका है। मैं पूरा इतिहास निकालने बैठा, मैं उसके बारे में, फिर मैं जाके PDF थोड़े डाउनलोड किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। ये हर चीज आसानी से आती नहीं है। नॉन लेफ्ट की प्रॉब्लम ये है कि उनको एक तो है ना कुछ भी इनकन्वीनियंट होगा तो बोल देंगे दिस इज वेस्टर्न, एज इफ बीइंग वेस्टर्न इज बैड. मुझे नहीं मालूम बीइंग वेस्टर्न हाउ फंडामेंटली इट इज बैड. ओनली अ मोरॉन वुड थिंक बाई डिफॉल्ट बीइंग वेस्टर्न इज बैड. भाई इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम कर, तू तेरा मोबाइल फोड़ दे, तेरा लैपटॉप तोड़ दे, क्योंकि भाई वो लोग ने ही ईजाद किया. भले तू और तू उधर जाके ईजाद कर पाया, तू यहाँ पे नहीं कर पाया, तो आई एम सॉरी टू से बीइंग वेस्टर्न एज एन आर्ग्यूमेंट इज अ गार्बेज आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब नहीं होता है. नॉन लेफ्ट के अंदर एक ये इंटेलेक्चुअल इनकैपेसिटी है टिल द एक्सटेंट कि मैं ये अजीत को खुश करने के लिए नहीं बोलता, मैं लिटरली अगर मैं किसी आर्टिकुलेट स्पीकर को बुलाने की कोशिश करता हूँ वो लिटरली अजीत के बियॉन्ड कोई मिलता नहीं है. और ये मैं अजीत को ऑफलाइन भी बोल चुका हूँ कि मेरी मेरी हालत है कि नंगा रहेगा क्या, निचोड़ेगा क्या. तो हमारी एक एक बहुत सीरियस क्राइसिस है और इसको इसको कोई सॉल्व करे कैसे करे मुझे नहीं मालूम. मगर अजीत आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट बिफोर गोइंग आई विल लीव यू विद द लास्ट वर्ड. तो भले वो सीए का इशू है, नमाज का हो, इस्लामिज्म का इशू है, तो इस्लामिज्म बिकॉज पाकिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ इस्लामिज्म, तो क्या हाउ डू वी गो फॉरवर्ड जहां पे हम ह्यूमेन भी हो एट द सेम टाइम हम लोग हमारे फर्मनेस से हटे भी नहीं, हाउ डू वी डू दैट?
नहीं, जो जो सीए का प्रोसेस है मुझे लगता है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए और वर्ल्ड कम्युनिटीज को ये स्वीकारना होगा और वो एक्सेप्टेंस उनसे स्नैच करने के लिए या उनपे फोर्स करने के लिए आपको अपने एजेंडा सेटिंग टूल्स भी लाने होंगे. आपके पास क्यों कोई सीएनएन नहीं है? अल जजीरा मतलब एक झाटू सा यार, मतलब देश इतना छोटा कुवैत, वो जो है तुम्हें एंटी मुस्लिम लॉ ये कर देता है और हम ही लोग उसको शेयर करने में रह जाते हैं. तुम्हारा प्रोपेगेंडा या एजेंडा सेटिंग आम कहाँ है? तुम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, तुम नंबर वन बन जाओ, उससे क्या होता है? तुम बाहर के लोगों को दिखाओ ना कि यही एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में कैसे काम करता है और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को टच तक नहीं करता. उसे कश्मीर दिखता है, केरल दिखता है, बंगाल दिखता है, लेकिन बंगाल में संदेश खाली नहीं दिखेगा, वहां पे क्या चल रहा है. तो इन सब चीजों को प्रोजेक्ट करने के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए जो सत्ता के पास होती है. वो हमारे आपके पास उतना है ही नहीं यार, हम खोज करके मर जाएंगे, हम कहां अल्टीमेटली हम गूगल तक जाएंगे. हमारे पास ना आर्काइव्स के लिंक होते हैं, वो भी कोई रिसर्च सर्च कर रहा हूं उस तरह से. बियॉन्ड गूगल हमारे पास क्या है? आप एआई तक को ट्रस्ट नहीं कर सकते. अगर कहते हैं चलो गूगल को चैट जीपीटी ने बहुत ये कर लिया, उसमें भी इतने बायस्ड चीजें आ जाते हैं. विकिपीडिया आधा से ज्यादा कोई भी कुछ भी एडिट करके उसमें मोपला को हिंदुओं द्वारा किया गया, मुसलमानों पर नरसंहार बता दिया गया, पूरा का पूरा नैरेटिव पलट के डाला हुआ है. तो इसको कंटेन करने के लिए और अपना एक मतलब अपने आवाज को उठाने के लिए एक राष्ट्र के तौर पर जो वैश्विक प्लेटफॉर्म पे पुश करना हमें वैसे आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी जो हमारे बहुत सारे लोग बाहर में रहते हैं उनको डिफेंड करने के लिए कुछ मिले तो आपको इस तरह की चीजें क्रिएट करनी होगी जो ये फॉल्स केसेस क्रिएट करके कुछ भी लिख करके कोई भी निकल जा रहा है. वो जब आप करने लगोगे ना तो लोगों को अपने आप, क्योंकि वेस्टर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए इस्लामिज्म का प्रॉब्लम वो खाली ओसामा बिन लादेन ने जब तक अटैक नहीं किया था वो तो मानते ही नहीं थे कि इस्लामिक टेररिज्म भी कुछ होता है. जब उनकी फटी पड़ी तब उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, तब भी उनका पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम आप देखिए अमेरिका का कैसा, वो अभी भी इस्लाम को प्रॉब्लम नहीं मानता. वो अभी भी उसके लिए इंडियन एक्सट्रीमिज्म मतलब हिंदू एक्सट्रीमिज्म वो मान लेता है, लेकिन इस्लामिस्ट में बोलता है कि नहीं नहीं वो आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं. तो उनके लिए ये फॉरेन सब्जेक्ट है, वो एलियन है कि इंडिया पाकिस्तान का उसकी क्या समस्याएं थी. तो जब तक आप उन तक पहुंचाओगे नहीं उस ब्रूटल स्टोरीज को, तब तक आप जो है यू कैन नॉट विन दैट, वो आप नहीं कर पाओगे. ये करना चाहिए तभी जाकर के ये इशू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा और हमारे भी देश के लोगों को पता चलेगा कि भाई इस तरह की चीजें हैं. अभी तक नहीं जानते हैं लोग कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है हिंदुओं की.
अनफॉर्चुनेटली वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इसमें कि आई थिंक एक आर्टिकुलेशन करना बहुत जरूरी है और फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए. जब आपके मूलतः फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे
तो आपको ये सब चीजों में समस्या नहीं होगी। और बियॉन्ड अ पॉइंट मैंने हमेशा कहा है कि आपको वेस्टर्न अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर इकोनॉमी इज सो बिग दैट द वेस्ट विल वर्क विद यू एंड यू आर नॉट दैट इमोरल अ सोसाइटी दैट द वेस्ट विल नॉट। द वेस्ट हैज वर्क विद फार मोर इमोरल पीपल बिफोर यू थिंक दैट यू आर देयर। अरे भाई मतलब बिफोर मोहम्मद बिन सलमान भी अमेरिका was dealing with Saudi. In fact, America hates Mohammed bin Salman. एक आदमी है जो उनको सुधार रहा है, तो अमेरिका को उससे प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मेरे समझ के बाहर है ये चीजें, and some things are beyond my pay grade, so I'm not going to do. But Ajit, thank you very much for coming. As always, it was a pleasure to talk to you. और wishing you all the best. ऐसे ही लोगों को दुखी करते रहना।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, थैंक यू।
चलो आज की पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। फिर से डिस्क्रिप्शन में, भले आप इसको ऑडियो पे सुन रहे हो या आप वीडियो में देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में अजीत की बुक्स को खरीदने का लिंक, अजीत के यूट्यूब चैनल का लिंक और अजीत का ट्विटर या एक्स हैंडल जो है, वो तीनों मेंशनड है। तो जाओ फॉलो करो अजीत को। अगर बुक नहीं पढ़ी, अजीत की हिंदी में पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक पढ़ो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो, मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबर बन जाओ, या मर्चेंडाइज लेना चाहते हो तो वेबसाइट kushalmehra.com पे चल जाना। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो लाइव सब्सक्राइब कमेंट करो और ऑडियो वाले हो तो रेटिंग दे देना। आप लोगों को अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।